मैं सोचता हूँ मैं एक तरह का बहुत देर तक बोलने वाला उबाऊ प्रचारक हूँ, मैं अशिक्षित हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कुछ लोगों को एक प्रचारक के जैसा नहीं दिखाई देता, मैं एक प्रचारक होने का दावा भी नहीं करता हूँ, मैं एक तरह का अतिरिक्त टायर हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ मेरे पास परमेश्वर की ओर से संदेश है जो मेरे अपने तरीके से है, केवल उसी तरीके से मुझे इसे प्रस्तुत करना है, मैं इसे संसार के लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, और यदि मैं उस संदेश के साथ नहीं बना रहता तो मैं परमेश्वर के लिए एक कपटी और आपके लिए एक ढोंगी होता हूँ। एक व्यक्ति जो एक बात को कहेगा और कुछ और ही विश्वास करेगा, यह एक ढोंगीपन है। हमें हमेशा ही अपने हृदय से सच्चाई ही को बोलना है, जिससे जब लोग हमारी ओर देखें, यहाँ तक वो हमारे साथ सहमत भी नहीं हो, हम पुरुष और स्त्री को सम्मान करना चाहिए, जिससे हम हमारे हृदय से बोले जो कि हमारे हृदयों में सत्य है। पिछले वर्ष या उसके पहले के वर्ष मुझे एक मसीह से बोलने का सौभाग्य मिला, या मुझे क्षमा करना, मुझे क्रिसमस के संदेश पर यहाँ रमदा में बोलने का सौभाग्य मिला, और मैं सोचता हूँ मैंने उस विषय पर यहाँ पर या तो फिनिक्स में ये प्रचार किया, छोटा बैतलहम ही क्यों, और मैं सोचता हूँ बाद में पिछले वर्ष यहाँ पर मैं उस पर बोला, हमने पूर्व में उसके तारे को देखा है और हम उसकी आराधना करने को आए हैं, और आप जानते हैं बाइबल को हमने पढ़ा है और हम उन क्यों को सोचते हैं, और आज रात मैंने सोचा यदि आप मेरे साथ कुछ धीरज को धरेंगे और मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, मैं आपको अपने क्रिसमस के संदेश को देने की कोशिश करूंगा। केवल परमेश्वर ही जानता है हम अगले क्रिसमस में कहाँ रहेंगे, यदि इसके बाद एक अगला क्रिसमस होता है तो, इसलिए कि शायद यह आखिरी क्रिसमस हो सकता है वे एक साथ इकट्ठा बैठे हुए हैं, जब तक हम एक और मेज में नहीं बैठते हैं, और ये एक इस तरह का नहीं होगा, लेकिन ये होगा जब हम उसके साथ नए तरह से प्रभु भोज को खाएंगे और पिएंगे, उस मार्ग के अंत में पिता के राज्य में होंगे, और फिर आइए हम आज रात इसके समीप जाएं, इस तरह से यदि ये क्रिसमस का आखिरी संदेश होता था तो हम हमेशा के लिए एक साथ सत्यता की गहराई में बैठे होते। मैं आज रात असाधारण विषय पर बोलना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी आप पाते हैं परमेश्वर असाधारण बातों में है, वो उन चीजों को असाधारण तरीके से करता है, ना ही साधारण तरीके से, वे असाधारण तरीके हैं, असाधारण समयों में, असाधारण दृश्यों में वो असाधारण है, और मैं यह चाहता हूँ प्रभु ने चाहा तो मैं ये चरवाहे ही क्यों होने थे विषय पर बोलना चाहता हूँ, और अब इससे पहले वचन की ओर जाएं, जिसे मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर है, आदि में वचन था, वहाँ परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। जैसे मैंने कहा पिछले सप्ताह या उसके पिछले सप्ताह फिनिक्स में ये साबित हुआ है कि वहाँ इस धरती पर जो सारी विषय वस्तु है, लोग अब इस इमारत से होकर गुजर रहे हैं, टेलीविजन इसे साबित करता है, ये एक दूसरे ही अयाम में है, और हमारी स्वाभाविक आंखें और हमारी चेतनाएं इसे पकड़ नहीं सकती हैं। ये टेलीविजन नहीं है जो कुछ उत्पादन करता है, यह तो केवल वे चैनल है, आप अपनी उंगली से नहीं चला सकते हैं, आप अपनी आंखों को नहीं झपका सकते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड होने के लिए साबित हुआ है। मैं खड़ा हो सकता हूँ या एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पर एक टेलीविजन का पर्दा होगा, केवल इतना नहीं, वो व्यक्ति बोल सकता है, अपने उंगली को हिलाता है, अपनी आंखों को छपकाता है, या यहाँ तक जो उसने कपड़े पहने हुए हैं, ये यहाँ सामने पर्दे पर दिखाई देगी, और वो अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ वहाँ दुनिया में है। देखो वहाँ एक रंग रहित समुद्र का चक्र है, मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये वहाँ पर है, मैं नहीं सोचता कि कोई भी सचमुच इसकी व्याख्या कर पाएगा, इसलिए टेलीविजन इसे अंदर खींच सकता है और कुछ यंत्रों के द्वारा इसे एक वास्तविक बनाता है, जिससे वे पर्दे पर प्रकट कर पाता है। अब यही चीज यहाँ पर थी जब आदम यहाँ था, टेलीविजन यहाँ पर था जब एलिया कर्नेल पहाड़ पर बैठा हुआ था, ये यहाँ पर था जब मार्टिन लूथर वो जवान याजक जमीन पर उन अधिकारों को फेंक दिया और कहा ये विधि सम्मत है, और धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा, ये तब यहाँ पर था, लेकिन हम इसकी अभी खोज कर रहे हैं। और उसी तरह से जो आज रात हमारी मौजूदगी में परमेश्वर है, दूत, अलौकिक जीव जो हमारी स्वाभाविक चेतना की दृष्टि से ओझल है, लेकिन किसी दिन ये वास्तविक होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी टेलीविजन है और वैसे ही जैसे सार्वजनिक है। अब इसी कारण से मैं वचन का विश्वास करता हूँ। यीशु ने कहा, जो कोई इस बाइबल के साथ एक शब्द भी जोड़ेगा या इसमें से एक शब्द भी निकालेगा, उसका भाग जीवन की किताब से निकाल दिया जाएगा। तो तब आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे इसे पढ़ने से पहले। अति पवित्र, किसी भी मनुष्य के पास शारीरिक शक्ति है वो बाइबल के पन्नों को पलट सकता है, लेकिन केवल परमेश्वर ही इसे प्रकट कर सकता है। और हमारे सिरों को अब हम नीचे मिट्टी की ओर झुकाते हैं जहाँ से हमें लिया गया है, और किसी दिन हम वापस चले जाएंगे। मैं सोचता हूँ, और इस महाक्षण में जब हम क्रिसमस की ओर पहुँच रहे हैं, यदि यहाँ पर कोई है जो सचमुच में अयोग्य महसूस कर रहा है और इस प्रार्थना में स्मरण करवाना चाहता है, क्या आप बिना अपने सिर को उठाए केवल अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर कहेंगे, प्रभु मुझे इस क्रिसमस में याद करना। परमेश्वर आपको आशीष दे। अति पवित्र और महिमामय स्वर्गीय पिता, सर्वसामर्थी परमेश्वर, वो जो आदि से था, इससे पहले वहाँ कोई तारा या एक अणु, एक कण हो, आपने सारी चीजों को आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बनाया और उसमें सारी चीजों को हमें आजादी से दे दिया है। हम आज रात आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें ये सौभाग्य दिया है ताकि हम अपने आप में एक साथ इकट्ठा हों पवित्र आत्मा के द्वारा चेतावनी और सिखाए जाने के लिए। और पवित्र आत्मा आपके वचनों को लेता है और उन्हें हमारे लिए प्रकट करता है, क्योंकि यीशु ने कहा, जब वो सच्चाई का आत्मा आएगा वह तुम्हें इन बातों को याद दिलाएगा जिसे मैंने कहा है, और आने वाली बातों को तुम्हें दिखाएगा। परमेश्वर, वहाँ पर हमारे बीच में एक भी नहीं है, ना ही वहाँ इस धरती पर कोई एक है जो आपके वचन का अनुवाद करने की कोशिश करे, क्योंकि यह लिखा है कि परमेश्वर के वचन का कोई व्यक्तिगत अनुवाद नहीं है। इसलिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आज रात हमें उसे दे, हम में से हर एक जन को उस भाग को दे दे जिसकी हमें संतुष्टि के लिए आवश्यकता है, उस बुक के लिए जो हमारे हृदय में है। आपके साथ नजदीक चलने के लिए हम बेकार हैं, अशुद्ध हैं, अयोग्य हैं। वो बालक जिसने बैतलहम में जन्म लिया था, जिसने सबसे सिद्ध जीवन को जिया और जो धरती पर केवल सिद्ध मनुष्य था और स्वयं को बंधन मुक्त को दे दिया जिससे वो हमें अशुद्ध पापियों से शुद्ध करे और हमें पिता के साथ एक संबंध के अंदर लेकर आए, आज रात प्रदान करें कि उसका पवित्र आत्मा वचन को प्रचार करने के जरिए से हमारे लिए इसे करे। प्रभु परमेश्वर, आज धरती पर बहुत से बीमार हैं, सबसे उत्तम दवाइयों के साथ हैं, जिसके साथ हमने निरंतर डॉक्टर की उपाधि को हासिल किया है, और उत्तम दवाइयां और बेहतर अस्पताल हैं, और अब भी हमारे सारे वैज्ञानिक खोज करते हैं, फिर भी पहले से और अधिक बीमारियां हैं जिसे संसार ने कभी जाना था, क्योंकि वहाँ पहले से और अधिक पाप और अविश्वास है जिसे संसार ने कभी जाना था। हमारी आज रात सहायता करना, महान चिकित्सक और बीमारों को चंगा करें जो हमारे बीच में है, और हमें आत्मा देना, वो सच्चा क्रिसमस का आत्मा। जब आप जब मूर्ति पूजकों के समारोह, क्रिसमस के पेड़ों की आराधना करते हैं, एक सांता क्लॉस नामक व्यक्ति की झूठी कहानियां हैं, और हमारे ईश्वर के खरगोश और विभिन्न फैशन जिस पर व्यवसायिक संसार ने लाभ उठाया है, ये हो सकता है परमेश्वर को एक तरफ कर देगा। आइए हम मसीह के अंदर प्रवेश करें जो वचन है, क्योंकि हम इसे उसके नाम से और उसकी महिमा के लिए मांगते हैं, आमीन। यदि आप पवित्र लेख में से मेरे साथ पढ़ने के लिए पलटना चाहेंगे संत लूका का दूसरा अध्याय, क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? क्या आप वहाँ माइक्रोफोन में कुछ बदलाव को करना है? क्या वहाँ पीछे मुझे ठीक से सुन सकते हैं? यदि आप सुन सकते हैं तो अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद। दूसरे अध्याय के सुसमाचार संत लूका के अनुसार, उन दिनों में अगस्तुन कैसर की ओर से आज्ञा मिली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्रिनियोस सूर्य का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने का वंश था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया, घर के दाऊद को, क्योंकि वो उसका वंश था, कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और उसने अपना पहलौटा पुत्र जना और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिय थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ देखोगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के पास स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम यह सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु उसके पढ़े हुए वचन पर उसकी आशीष को जोड़े। अब यह एक क्यों इस महान घटना को चरवाहों पर प्रकट किया गया, यह एक प्रकार से हमारे लिए एक चौंका देने वाली बात होगी। मेरे पास यहाँ कुछ वचन लिखे हुए हैं और थोड़े लिखे हुए शब्द हैं जिस पर मैं जानने की कोशिश करूँगा, ताकि उस क्यों को मेरे उत्तम प्रयास की जानकारी से मैं आपको समझाऊं। और हो सकता है इसके बाद कि परमेश्वर आज रात अपने अनुग्रह से हम में से उस क्यों को निकाल देगा। लेकिन क्या हम में से ज्यादातर, मैं समझता हूँ, एक समय या कभी तो सोचा होगा इस सारे समय की सबसे महान घटना को चरवाहों पर क्यों प्रकट किया गया था, क्यों इसे चरवाहों को प्रकट किया गया और उस समय के धर्मशास्त्रियों को नहीं, वे ही वो एक थे जिन्हें इसे सुनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। क्यों इसने आकर धनवानों को छोड़ते हुए निकला और निर्धन के पास आ गया, क्यों इसने आकर और पढ़े लिखे और ज्ञानियों को भी छोड़ते हुए आगे निकला और नम्र और अनपढ़ के पास आया। वहाँ पर इसमें ऐसे कुछ सवाल हैं, क्यों और किसी और कारण से मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान देना, उस बालक ने बैतलहम में जन्म लिया, जो बैतलहम का इब्रानियों में अनुवाद होता है, जैसे हमने यहाँ कुछ वर्ष पहले अनुवाद बताया था। बैतलहम मतलब परमेश्वर की रोटी का घर, और हमने वचनों में से साबित किया वो कोई और स्थान में नहीं आ सकता है। बैतलहम को राहब और उसके पति के द्वारा स्थापित किया गया था। राहब एक वेश्या थी जिसे उस इजरायलियों की सेना से उस सेना प्रमुख ने आमंत्रण किया उनके येरियो के कब्जा करने के बाद, और विश्वास के द्वारा उसकी परिस्थिति में उसने परमेश्वर के संदेश का भरोसा किया और वो बच गई थी। और वहाँ पर से जब यहोशू ने देशों का विभाजन किया जहाँ पर हर एक जन को होना है, और यह एक बड़ी शिक्षा है कि किसी समय मैं आशा करता हूँ तूसान में इसे ले सकूँ उन इब्रानी माताओं के लिए जो उन बच्चों को जन्म दे रही थी। जब वो बालक के जन्म की प्रसव पीड़ा की कराह में थी, उसने बालक के नाम को पुकारा और प्रतिज्ञा देश में इसे स्थानीय रूप में स्थान में रख दिया। यही जनजाति है। वो महान चीज सारा परमेश्वर का वचन ठीक एक साथ जुड़ता है। यदि यह एक साथ नहीं बैठता है तो ये परमेश्वर का वचन नहीं है। यह सही नहीं जुड़ता है। यह तुम्हारे विचार है जो वचन को सही नहीं जुड़ रहे हैं। यह सब एक साथ सही जुड़ते हैं। तो फिर वो जीवन की रोटी है, जैसा हमने पिछले हफ्ते फिनिक्स में सिखाया था या उसके पिछले हफ्ते में। और वो जीवन की रोटी होने के नाते वो परमेश्वर की रोटी के घर को छोड़ कोई और स्थान में नहीं आ सकता है, और इसलिए वो क्यों था। अब यहाँ यीशु ने बैतलहम में जन्म लिया, और बैतलहम में यहूदियों का मंदिर था। बड़े धार्मिक नेतृत्व करने वाले बैतलहम में रहे थे।
David, the great king shepherd, was
उस महान चरवाहे राजा दाऊद ने बैतलहम में जन्म लिया, उसके पिता यीशे ने बैतलहम में जन्म लिया, उसके दादा ओबेद ने बैतलहम में जन्म लिया था, और वे सारे पिछले भी वो बैतलहम से आए थे। और यहाँ यीशु दाऊद के पुत्र ने उस बड़े गिरजे घर की ठीक छाया के नीचे बैतलहम में जन्म लिया। फिर यदि वे लोग प्रशिक्षित थे और इन सारे वर्षों में मसीहा के आने के लिए देख रहे थे, 4000 वर्षों से मसीहा के आने की भविष्यवाणी की गई थी, और फिर यदि मसीहा का जन्म बड़े गिरजे घर की छाया के नीचे होता है, वे क्यों ऊपर सीधे पहाड़ों पर चले गए उन अनपढ़ और अशिक्षित चरवाहों की ओर इस महान संदेश को लाने के लिए जो पहला संदेश है। और चरवाहों को आज्ञा दी गई ना ही ज्ञानी और शिक्षित को, लेकिन चरवाहों को। ये एक अजीब बात है, क्या ये नहीं है? लेकिन वहाँ पर कहीं तो क्यों को होना है, वहाँ एक क्यों है। अब वहाँ पर एक क्यों का उत्तर होना है, और सिवा परमेश्वर के कोई मनुष्य उत्तर को नहीं जानता। केवल वो ही है एक जो उत्तर को जानता है। अब याद रखना, मसीहा पहले से ही शहर में था, शहर में जन्मा था, एक चरनी में, ठीक उस बड़े गिरजाघर के पास जहाँ पर वो महायाजक और वो बड़े याजक और वे धर्मशास्त्री और ज्ञानी और शिक्षित, वे सारे मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और ठीक उनके बीच में वो था। लेकिन फिर क्यों वे यहूदियों की पहाड़ियों पर अनपढ़, अशिक्षित, असभ्य, सबसे निर्धन की ओर गए, इस प्रकार के नियुक्त कार्य के लिए सबसे अयोग्य व्यक्ति के जैसा दिखा कि संदेश को प्रकट करे और उन्हें वहाँ पर संदेश को लाने के लिए भेजता है। क्या आप मेरे राय को जानते हैं? यह शायद बहुत ज्यादा फलस्वरूप नहीं है, लेकिन मैं अपनी राय को देना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के कारण इसका विश्वास करता हूँ कि वे जानते थे वे इस तरह के संदेश को ग्रहण नहीं करेंगे जिस तरह से ये आया था। यह उनके सिखा रहे ज्ञान के स्वाद में नहीं था, यह अलग ही था। ये वैसा नहीं था जो उन्हें सिखाया जा रहा था कि विश्वास करें वो ऐसा होगा। वो उनकी धर्म ज्ञान की समझ से विपरीत था। उनका सारा प्रशिक्षण, उनका सारा सिखाया जाना उसे छोड़कर वो आगे निकल गया था, जो बेकार हो गया था। मैं इसका विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर की बुद्धिमता थी कि जानते थे वे इस तरह के एक संदेश को ग्रहण नहीं करेंगे। तो मसीह यहाँ पर था और वहाँ पर कोई तो इसे पहचानने वाला होना ही है और वो उन्हें जानता था जो इस तरह से क्रियाकलाप से मिलते जुलते नहीं थे। वो एक अनपढ़ झुंड में होगा जो उसके संदेश को और पकड़ सकेगा। वो एक मिला जुला झुंड होने से जो अपने तरीके में स्थिर थे, जो उन्हें कुछ भी नहीं मोड़ पाया, यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन भी। और अब मसीह मित्रों, मुझे इस सवाल को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ पूछने दो। मैं अब सोचता हूँ यदि वो आज रात उसी तरह से उस कार्य को करेगा और हमें इस पीढ़ी में भेजता है, वो प्रतिज्ञा किया वचन जिसे इस पीढ़ी के लिए प्रतिज्ञा किया गया है। मैं सोचता हूँ यदि हमारे धर्म ज्ञानी और विद्वान और ज्ञानी संदेश को नहीं घुमाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने तब किया, तो मनुष्य नहीं बदलता है, नहीं परमेश्वर का वचन बदलता है। वो न बदलने वाला परमेश्वर है, वो नहीं बदलता है। ध्यान देना, दूत आ रहे हैं और उनके संदेश को ऐसे निचले वर्ग के मनुष्य को दे रहे हैं, जबकि वहाँ पर धरती के विचारों से इन निर्धन अनपढ़ चरवाहों से और ज्यादा निपुण मनुष्य थे। वे चरवाहे किसी से भी अधिक अनपढ़ थे। उसे केवल उसकी भीड़ को छोड़कर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। उसे गणित जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसे ये जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी कैसे उन अणु को विभाजित करना है। उसे कोई विद्या ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसे केवल उसकी भीड़ों को ही जानना था। यही है जो सब उसे जानना है। और परमेश्वर वो महान बुद्धिमता, वो झरना और सारी बुद्धिमता का साधन, वो इस तरह के एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जैसे मेरा मतलब व्यक्तियों को, और सारे पूरी तरह से प्रशिक्षित विद्वान को छोड़ते हुए जिसे यह जानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये एक बात को दिखाता है कि उन्होंने गलत कार्य क्षेत्र में शिक्षा पाई थी। देश के सारे महत्वपूर्ण लोगों को छोड़ते हुए वहाँ पर महत्वपूर्ण लोग थे, बड़े शिक्षक थे, काइफा और महायाजक और भी दूसरे बड़े व्यक्ति थे, सारे इज़राइल के महान पढ़े लिखे व्यक्ति, सारी संस्थाएं और डिंग मारते हुए धर्मशास्त्रियों को। परमेश्वर उन सब में से उन्हें हरेक को छोड़ते हुए आगे निकल गया। अब यही परमेश्वर की बुद्धिमता है। ध्यान देना, वो सबसे उच्च स्वर्ग धरती के सबसे नम्र और अनपढ़ को आदर देने के लिए तुरंत आ गए। वो स्वर्ग के सबसे उच्च नीचे उतर आए ताकि वो धरती के सबसे निचलों को स्वयं को ज्ञात करवाए। सारे जो बीच में हैं, उन्हें छोड़ते हुए उन साधारण से गडरियों को स्वयं को ज्ञात करवाए। साधारण से गडरियों के लिए वो आते हुए ताकि उन्हें सारे समय के सबसे महान संदेश को दे दे। वहाँ बहुत से महान संदेश वाक हुए थे। वो नूह के दिन को सोचेंगे और वे नबी और वे महान याजक और इत्यादि जो उन बीते हुए दिनों में हुए थे। वो बड़े पढ़े लिखे मनुष्य, वे राजा, महाराजा, सम्राट, लेकिन यहाँ वो सारे संदेशों में सबसे महान संदेश के साथ आता है। वो संदेश क्या था? मसीह अब यहाँ पर है, देखा? और ये ज्ञात करवाए उन सारे प्रशिक्षित लोगों को छोड़ते हुए ताकि इसे नम्र लोगों को ज्ञात कराए। इस पर सोचें, वे सारे पादरी, सारे गिरजों के मनुष्य, वे सारे शिक्षक, वो सारा धर्मशास्त्री का प्रशिक्षण, वो सारा धन जो खर्च किया गया था, सारी कलीसियाएं, सारे सिद्धांत, सारे संप्रदाय को छोड़ दिया गया था। उनके पास जो सारी शिक्षा थी, जो उन्होंने उस सारी धर्म विद्यालयों में बिता दी थी, और धर्मांतरित करते हुए सारे सदस्यता, और जो हर एक चीज जो उन्होंने सोचा था, उन्होंने परमेश्वर का आदर किया था, फिर भी ये मुख्य संदेश उन सबको छोड़ते हुए निकल गया था। अनोखा है, क्यों? समझे? और ध्यान देना, इतना ही नहीं, लेकिन इस तरह की घटना के लिए सबसे अविश्वसनीय स्थान था। अब वे चरवाहे थे, वो एक जिन्होंने संदेश को ग्रहण किया था, और अब ध्यान दे, वो संदेश कहाँ पर था? सबसे अविश्वसनीय स्थान में जिसे कोई भी इसके आने के लिए अपेक्षा करेगा। और मैं आज रात को सोचता हूँ, यदि हम प्रभु यीशु के सच्चे संदेश को आने के लिए देख रहे हैं, मैं सोचता हूँ यह एक अविश्वसनीय झुंड में होगा। एक ऐसा स्थान जो था कि वो विशाल बड़ा सभ्य संसार और आज की कलीसियाएं क्या सोचेंगी, ये एक धर्म विरोधियों का झुंड था। मैं सोचता हूँ यदि ऐसा नहीं होता तो हम उसे कहाँ पर पाते थे। वो सबसे अविश्वसनीय स्थान और सबसे अयोग्य बोलने वालों के लिए, चरवाहे बोलने के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल भेड़ों को बुलाते हैं। ठीक है, हो सकता है इसीलिए ये आया हो, लेकिन वहाँ पर एक प्रतिज्ञा किया हुआ वचन था। ध्यान देना, ये इसे फिर से कर सकता है। ये देश के उन सारे आलिशान मनुष्यों को छोड़ते हुए निकल गया, ये सारे कुलीन मनुष्यों को छोड़ते हुए निकल गया, और जो अपने आप में कुछ नहीं है उन पर प्रकट हुआ था। और वो सारे आलिशान मनुष्य जो बड़ी विद्वान शास्त्र से और मनोविज्ञान और उच्च शिक्षाओं और बड़े प्रधान गिरजाघरों से सुसज्जित हैं, इसने सबको छोड़ दिया और जो अपने आप में कुछ भी नहीं है उन पर प्रकट किया। वो बुद्धिमता, वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की विशाल बुद्धिमता ने इसे किया, ताकि उन्हें वो सबसे महान संदेश को ज्ञात कराए जो हमेशा था, मसीह अब धरती पर है। क्या ही बुद्धिमता है जो केवल परमेश्वर से आ सकती है, जो बुद्धिमता को जानता है। सारी बुद्धिमता और वो सारी पढ़ाई लिखाई और सब कुछ अब व्यर्थ पड़ा हुआ था, और वो उसे छोड़कर निकल गया था जो परमेश्वर की महान बुद्धिमता के द्वारा था। मैं इसे बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि ये अंदर गहराई में चला जाए। ये सब व्यर्थ पड़ा हुआ था, जो कुछ अच्छा नहीं था, इस सब को छोड़कर वो निकल जाता है, ताकि परमेश्वर की बुद्धिमता के पास अधिकृत रास्ता हो, जिससे परमेश्वर जो अपने आप में कुछ नहीं है उन्हें लेता है ताकि कुछ तो बनाए। हम यहाँ रुककर यहोन्ना पर बोल सकते हैं, हम यहाँ रुककर और अहिल्या पर बोल सकते हैं। कोई नहीं जानता अहिल्या कहाँ से आया था, वे सब जानते थे, वो बस दृश्य पर दिखाई दिया था। वो पहले के युगों में से होते हुए आए नबी, वे कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे लिया और कलीसिया की नीति शास्त्र और शिक्षाओं को छोड़कर निकला, ताकि यह दिखाए कि वो परमेश्वर है। वो कुछ लोगों को लेता है जो अपने आप में कुछ नहीं है, ताकि इसके साथ कुछ तो करे। वो ऐसा करने के द्वारा अपनी बुद्धिमता और परमेश्वरत्व को दिखाता है। जो वो अपने आप में कुछ नहीं है उन्हें लेता है। जब उसने पहले मनुष्य को बनाया, उसने केवल एक मिट्टी का गोला लिया और इसमें से एक मनुष्य को बनाया, जहाँ पर यह कुछ और नहीं लेकिन मिट्टी थी, लेकिन उसने मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर अब अपने आप में यह कुछ नहीं है उसे ले रहा है, जिसके साथ वो कुछ तो करता है। और जब तक हम समझते हैं हम कुछ तो हैं, तब हमें परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हमें वो सब भूलना ही होगा जो भी हम जानते हैं या सीखा है। जैसे वो महान संत पौलुस, उसने कहा उसे वो सब भूलना था जो भी उसने सीखा था, जिससे वो मसीह को जान सके। उनकी सारी पढ़ाई लिखाई, उनकी सारी शिक्षाएं और इत्यादि उनकी तैयारी थी जो उनके लिए बेकार थी, इसने अतः उसका इनकार कर दिया। वही पढ़ाई लिखाई जो उनके पास उसके लिए थी, ताकि वे उस पर विश्वास करें, लेकिन वे पीछे मुड़ गए और उसके सबसे ज्यादा निंदा करने वाले शत्रु बन गए और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या आप जानते हैं कि इतिहास अपने आप में हर बार अक्सर दोहराया जाता है? यह एक प्रख्यात तथ्य है, यह फिर से ठीक हमारे पास हो सकता है। ओह, आप कहते हैं यदि मैं उस वक्त होता था तो मैं अब, यदि आप जानना चाहते हैं आपने उस वक्त क्या किया होता था, आप ठीक अभी अपनी वर्तमान की दशा को देखें और आप देख सकते हैं आपने उस वक्त क्या किया होता था, क्योंकि ये निश्चय ही दिखाई दे रहा है। उसके वचन को विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किए गए थे, और फिर जब उसका वचन उन्हीं की आंखों के सामने प्रमाणित हुआ था, उन्होंने वचन का इनकार किया जो प्रमाणित हुआ था। जब परमेश्वर ने जो वो करेगा उसे साबित किया और कहा कि वो क्या करेगा और साबित किया जो वो करेगा, तब वे पीछे मुड़ गए और इस मनुष्य को एक दुष्ट आत्मा कहा, जिसने उन सबको श्रापित किया। सोचो किस बात ने जगह ले ली थी, सोचो उनका क्या कारण बना, उनका प्रशिक्षण ही उनका कारण बना जो उस दिन के लिए देहधारी वचन को नहीं पहचान पाया। वही शिक्षा जो उनके विद्यालयों में थी उन्हीं सबसे उत्तम शिक्षाओं के साथ थी। और आप कहते हैं ठीक है हम आज ऐसा नहीं करेंगे, उनके शिक्षक हमारे आज के शिक्षकों से ज्यादा सर्वोच्च थे, सर्वोच्च मतलब आज के शिक्षकों से, और वे चूक गए। उनके पास 996 विभिन्न संप्रदाय नहीं थे जैसे आज हमारे पास हैं, उनके पास लगभग 3 थे और इन 3 में तीनों को पालन करते थे और तीनों ने इसे नहीं पहचाना। केवल यह दिखाई देता है जो मनुष्य करता है परमेश्वर के लिए मूर्खता है, समझे। अब वे इसे पहचानने से चूक गए, अब और उन्हें उसी बात को वापस करना था। मनुष्यों का उद्देश्य अच्छा होता है, ये हमेशा ही अच्छा होता है, और मनुष्य ने कभी अपने हाव भाव को नहीं बदला है, वो कभी अपने तरीकों को ज्यादा नहीं बदलता है। मैं संसार के मनुष्य की बात कर रहा हूँ। मनुष्य जो धार्मिक मनुष्य है हमेशा ही परमेश्वर की स्तुति करता है जो परमेश्वर ने कर दिया है उस बात के लिए, और हमेशा ही लोगों को सचेत करता रहता है और परमेश्वर जो करने जा रहा है, और फिर जो परमेश्वर कर रहा है अनदेखा कर देता है, समझे। मनुष्य ऐसा ही है, वो इसी तरह से बनाया गया है, वो हमेशा से ही ऐसा करता आ रहा है। और आज जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं आज रात जानते हैं यह वचन के अनुसार है, सही है, वे हमेशा ही परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो वो कर चुका है उसके लिए, कहते हुए वो क्या करेगा और अनदेखा कर देता है जो वो कर रहा है। यही बस मनुष्य की एक आदत है। उनका इसे करने का कारण था वे शिक्षक, अब मेरे विचार से उन्होंने वचन का अनुवाद किया था, कारण उन सब ने एक मसीह के आगमन में विश्वास किया, सारे इसराइल ने इसे विश्वास किया, वे आज भी ऐसा करते हैं। लेकिन उनका कारण था कि उन्होंने उसे नहीं पहचाना, उसका संदेश उसके कलीसिया संबंधी बातों के अनुसार मेल नहीं खा रहा था। वे उनके पास जो वचन का अनुवाद था, मसीहा ने कभी अपने आप को इस तरह से जाहिर नहीं किया था जो उन्होंने अनुवाद किया था कि वो इसे करेगा। जैसे मैंने पहले बताया था और फिर से कहता हूँ, परमेश्वर को उसका अनुवाद करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वो अपने वचन का स्वयं अनुवादक है। अब बाइबल कहती है, मैं अब आपको साबित करूंगा कि यह सच्चाई है। यशाया वो नबी इसके होने से 700 वर्ष पहले यशाया नबी ने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर एक ने उस युग में सोचा उनकी बेटी वो स्त्री होगी, क्योंकि यशाया ने इसे कहा है। लेकिन आप देखना, यह 700 वर्ष के बाद हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर को किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ी कि उसके वचन का अनुवाद करे, वो कब इसे करेगा या वो इसे कैसे करेगा, उसने कहा वो इसे करेगा और उसने इसे किया। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है कि वो यशाया में भी, मैं सोचता हूँ 28वां अध्याय लगभग 18वां वचन, और योएल नबी ने 2:28 में भी कहा कि अंतिम दिनों में वे अंतिम 2000 वर्ष वो सारी देह में अपनी आत्मा को ढेलेगा। उसने कहा तुम्हारे पुत्र और कन्या भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान मनुष्य दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े मनुष्य स्वप्न देखेंगे, और वो बातें जिसे वो करेगा। यशाया ने कहा, हकलाते हुए होठों से और अन्य जबान से मैं इन लोगों से बातें करूंगा, और यह वो विश्राम है, लेकिन वो इसे नहीं सुनेंगे, वे अपने सिरों को हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसने कहा परमेश्वर की सारी मेजें उल्टी से भरी हुई हैं और वहाँ पर कुछ भी साफ नहीं होगा। और यदि ये क्या यरूशलेम की तस्वीर नहीं है और उस दिन की कलीसिया की जो मसीहा के आगमन पर थी, आज भी वही तस्वीर है, ये केवल अपने आप में दोहराया जाना है। अब जब परमेश्वर कहता है वो एक बात को करेगा, उसने इसे किया है, इसकी परवाह नहीं कोई भी इसके बारे में क्या सोचता है, कोई भी क्या कहता है, जब परमेश्वर कुछ तो बोलता है वो उस वचन को खुद अनुवाद करने के लिए कर्तव्य से बंधा हुआ है, और वचन का प्रमाणित होना उसका अपने आप में अनुवाद है। ध्यान देना, उसके मसीह के संदेश को प्रमाणित कर रहा है, उसने प्रतिज्ञा की कि मसीहा जब आएगा वो क्या करेगा, और जब वो आ गया यहाँ तक पूर्व में, जब वे ज्ञानी पुरुष दक्षिण पश्चिम की ओर देखने लगे जहाँ से वे बाबुल पर थे, और उन्होंने ध्रुव तारे को देखा था, क्या आपको ज्ञात है वहाँ पर इतिहास का एक भी अंश नहीं है, कहीं भी नहीं, जो कोई भी ग्रहण क्षेत्र जहाँ पर उन्होंने हमेशा सितारों को समय के द्वारा रखा। महान पुरुष जिन्होंने सितारे का अध्ययन किया, वहाँ पर कोई भी इतिहास नहीं कहता है कि उनमें से किसी ने उस तारे को देखा है। क्यों? यह उन्हें नहीं बताया गया था, वे उसे इस तरह से नहीं देख रहे थे, लेकिन वे ज्ञानी व्यक्ति जानते थे वहाँ पर एक याकूब का तारा ऊपर आएगा और वे उसके लिए देख रहे थे, और ये समय से प्रेरित होकर निकला था जो यीशु ने बैतलहम में जन्म लिया था। अब मैं जानता हूँ हमारे मस्जिद की रीति रिवाज ये बिल्कुल हमारे कलीसिया के जैसे हैं, यह उलट पुलट बातें हैं। आप यहाँ पर जाएंगे और आप देखते हैं ज्ञानी व्यक्ति एक बालक की आराधना करने को आता है, और वहाँ पर वचन में इस तरह की कोई बात भी नहीं है। दो वर्षों के बाद वे यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल सीधे नीचे की ओर आते हुए, और टिग्रिस नदी के पार वे कभी एक शिशु की आराधना करने के लिए नहीं आए, लेकिन एक छोटा बालक लगभग दो वर्ष का था। ऐसा क्यों था? उसी समय पर हेरोदेस ने दो वर्ष के अंदर के सारे बच्चों को मार डाला था जिससे वह मसीह को पकड़ सके। आप देखते हैं उन्होंने, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इसे साबित किया था। और जब वे ज्ञानी व्यक्ति यरूशलेम को आए, उस तारे ने उन्हें संसार के धार्मिक भवन यरूशलेम की ओर अगुवाई की, और जैसे ही उन्होंने फाटक में प्रवेश किया, वो तारा, वो अलौकिक तारा जिसने उनकी अगुवाई की थी, उन्हें और कुछ भी दिखाने से अस्वीकार कर दिया। ये भले व्यक्ति, धनी व्यक्ति सुंदर ऊँटों के साथ ऊपर और नीचे मार्गों पर, ऊपर और नीचे मार्गों पर कह रहे थे, वो कहाँ पर है जो जन्मा है, यहूदियों का राजा, हमने उसके तारे को पूर्व में देखा है। और वो महान धार्मिक भवन चरवाहों के संदेश के दो वर्षों के बाद अब भी उनके पास उत्तर नहीं था, या उसके बारे में कुछ भी नहीं जाना था। सारे संस्थाओं के प्रधानों के पास उत्तर नहीं था, और उसने उस प्रधान को अशांत कर दिया, और उन्होंने शास्त्रियों को बुलाया कि वे आकर और पढ़ें, और उन्होंने मीका नबी की कहानी को पढ़ा जिसने कहा, हे बैतलहम, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, छोटा तो भी तुझ में से मेरे लिए पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और वचनों के पढ़ने के बाद भी, और अब भी उनकी आंखों के सामने वचन प्रमाणित हो रहा है, उन्होंने इसे ग्रहण नहीं किया, वचन इस तरह से कहने के बावजूद भी। उसी तरह से मुझे आज भी संदेह होगा यदि वो वचन जिसकी आज के दिन के लिए प्रतिज्ञा की गई है, जब वो प्रमाणित होगा। मैं, हो सकता है आपको फिर से कभी प्रचार नहीं करूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसे पकड़ें, वे फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। पिता की वो बुद्धिमता मनुष्य की बुद्धिमता को इतना मूर्खता कर देती है कि मनुष्य अपमानित हो जाता है। वो असल में उस स्थान में आ जाता है जहाँ मनुष्य अपने आप में बहुत ही लज्जित महसूस करता है, और वह इतना बड़ा भी नहीं है कि वह स्वीकार करे कि वह गलत है। वह फिर भी अपनी कहानी के साथ बना रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिता ने कितना वचन को साबित किया है कि वचन सच्चा है, और वो वही कर रहा है जिसकी उसने करने की प्रतिज्ञा की है। मनुष्य सोचता है कि उसकी बुद्धिमता परमेश्वर के लिए बहुत ही सर्वोत्तम है, भले ही ये उसकी बुद्धिमता के अनुसार नहीं आता हो। कहता है, क्यों? ये इस तरह से नहीं है, हर एक युग में ये सच्चाई है, अभी भी ऐसा करता है। देखो कैसे वो सारा मामला अब ठीक से बैठ रहा है। उन गडरियों को क्या प्रेरणा मिली? वे दूत नीचे आकर गडरिया से बातें कर रहे थे। परमेश्वर से दूत नीचे आए ताकि उन चरवाओं के झुंड से बातें करें। मैं सोचता हूँ यदि कभी आपको चरवाओं से बात करने का सौभाग्य मिला है, या उस जाति के साथ कुछ समय के लिए एक होने का। यदि आप, मैं इसे कहना पसंद नहीं करूंगा मेरी टिप्पणी की वजह से जो मैं कुछ देर में कहने जा रहा हूं, लेकिन जो चरवाहे होते हैं वह भेड़ के साथ इतना बना रहता है, यहां तक वो भेड़ की नाई मिमियाता है, वो भेड़ की नाई बोलता है, उसमें से भेड़ की गंध आती है। यह सही है क्योंकि वह भेड़ के साथ होता है, यही है जो वो जानता है, वह उसकी भेड़ है। अब सच्चाई का प्रमाणित वचन, जब ये चरवाहे नम्र अनपढ़ मनुष्य, क्या ही आदर है, क्या ही ये चरवाहे के लिए सही बैठ रहा है, ताकि इस एक नए जन्मे भेड़ के संदेश को ग्रहण करे। यह एक चरवाई को छोड़ किसी और के पास नहीं आ सकता, इसलिए उसने एक अस्तबल में जन्म लिया था, न ही कि एक घर में। भेड़ कभी घर में जन्म नहीं लेता है या एक गुलाबी सजे हुए अस्पताल के कमरे में, समझे, वह एक अस्तबल की भूमि में जन्म लेता है। इसी कारण से उसकी कैलवरी की ओर अगुवाई होती। आप एक भेड़ को उस वध खाने में चलाकर नहीं ले जा सकते हैं जिससे कि उसका वध करे। क्या आपने इसे जाना? इस वध खाने में उनके पास भेड़ों की अगुवाई करने के लिए एक बकरा होता है, और जब वह उठकर उसका उस घात करने के लिए वहाँ स्थान में ले जाता है, वह बाहर की तरफ कूद जाता है और भेड़ को आगे जाने देता है। एक भेड़ को अगुवाई किया जाना है, वह अपनी खुद की अगुवाई नहीं कर सकता है, तो इसलिए चरवाह को आना है उसकी भेड़ों के लिए। जब उन्होंने परमेश्वर के बालक को बिल्कुल वैसे ही पाया जहाँ संदेश वाक ने कहा था कि वो वहाँ पर होगा, और जब उन्होंने इस संदेश वाक के संदेश को चरनी में पाया बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दूत ने कहा था कि वो वहाँ पर होगा। हमने लोगों को कहते हुए सुना है, एक दूत ने मुझसे बातें की, उनसे कहा ये और वो। कभी कभी ये कितना हास्यपद लगता है। और मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि एक दूत ने उनसे बातें की और उनसे कहा ये और वो, यह बिल्कुल वचन के विपरीत है। अब कैसे एक दूत यह कर सकता है? यह बिल्कुल नहीं हो सकता है। और यदि परमेश्वर ने आपसे कुछ एक फलाना फलाना बात होने के लिए कहा है, आप कहते हैं उसने आपसे यह कहा है और यह नहीं होता है, तब यह परमेश्वर ने आपसे बात नहीं की है। बस याद रखना, यह सही है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, वह एक झूठ में नहीं पाया जाता है। जब उन्होंने उस बालक को पा लिया, क्या ही उनके लिए निश्चय ही एक आनंद की बात रही होगी, क्योंकि वो जिसने उसे संदेश को दिया था, उन्होंने उसे बिल्कुल वैसे ही पाया जैसे दूत ने इसे होने के लिए कहा था, और बिल्कुल उसी स्थान पर जहाँ दूत ने इसे होने के लिए कहा था। निश्चय ही क्या ही यह उनके लिए बात रही होगी। चरनी में क्यों? देखो, इन गडरियों के लिए वहाँ अस्तबल में होना आसान बात थी। आप क्या सोचते हैं, एक धर्मशास्त्री वहाँ पर रहा होता, वह अपने नाक पर हाथ रखकर कह रहा होता, मुझे इस स्थान से बाहर निकलना है, समझे? वो ऐसे स्थान से बाहर निकल गए होते, वो गंदे स्थान में था। लेकिन आप देखना, यह उन चरवाहों के लिए बिल्कुल उनके घर के जैसा था। परमेश्वर जानता है उसके संदेश को कहाँ पर भेजना है, समझे? बिल्कुल सही बात है। इस अवस्था में चरवाहे वहाँ अंदर चरनी में थे उनके मेमने के साथ, एक प्रमाणित संदेश जो उन्होंने सुना था। ये कितना सुंदर है, मसीह की उपस्थिति में जो उनके संदेश का प्रमाणित वचन है। जब चरवाहों ने इस संदेश को सुना कि मसीहा धरती पर है और उसकी उपस्थिति में आए, ठीक उनके खुद के वातावरण में, और संदेश को सच्चा होते हुए पाया जो वहाँ पर प्रमाणित हुआ था, निश्चय ही उन मनुष्यों के लिए कैसा महसूस हुआ होगा यह देखकर कि परमेश्वर ने इस महान बात को उनके लिए कर दिया था। क्यों धर्मशास्त्री ऐसे स्थान से निकल गए होते, इस तरह की परिस्थिति के नीचे वे वहाँ से तुरंत जल्दी से निकल गए होते? क्यों वो संदेशवाहक साधारण से गडरियों के लिए आ रहा है? हो सकता है वे यहाँ तक, वे उनमें से कुछ गडरिये शायद यहाँ तक अपने नाम का हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे। बहुत ही संदेहजनक है। आप जानते हैं वे गडरिये जिसे यीशु ने चुना जब वो धरती पर था उसके भेड़ के झुंड से। पतरस, क्या तुम मुझसे इनसे भी अधिक प्रेम करता है? हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ, जाकर मेरी भेड़ को चरा। और बाइबल ने कहा कि पतरस एक अनपढ़ और गवार मनुष्य था, अब भी वह चरवाहों को चुन रहा है। उन बीते दिनों की कलीसिया के सदस्य और वे याजक और पूरी तरह से उस दिन का प्रशिक्षित समाज अस्तबल से बाहर निकल गया होता। अब मुझे पक्का नहीं है कि आप में से बहुत लोग इसे समझ सकते हैं। हो सकता है आप जो शहर के लोग हैं, क्या ही एक यहूदिया के जैसे अस्पताल की दुर्गंध आती है जब ये जानवर उस अस्तबल में होते हैं, और ये क्या ही दुर्गंध रही होगी। क्यों इनमें से आज के प्रथम वर्गीय विद्वान बाहर निकल गए होंगे, यहाँ तक वे दरवाजे के अंदर भी प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन इससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ अपनी विशाल बुद्धिमता के द्वारा, ताकि इसे ऐसे लोगों को प्रकट करे जो इसे ग्रहण करेंगे। उस दिन के धर्मशास्त्री और ज्ञानी मनुष्य निश्चय ही इसे ग्रहण नहीं किया होगा। उन्हें इस प्रकार के स्थान में देखने के लिए बहुत ही नीचे होना था। क्यों? वह पहला स्थान यदि वे अपनी कलीसिया में वापस जाकर और गवाही देते हैं कि उन्होंने एक ऐसी सभा में भाग लिया है और एक अनपढ़ चरवाहों के झुंड पर विश्वास किया है जो इस तरह की अद्भुत घटना को ला रहे हैं, उन्हें उनकी कलीसिया से बाहर निकाल दिया गया होता था। उन्हें बैतलहम के समाज से बाहर निकाल दिया गया होता था यदि वे इस तरह के अनपढ़ झुंड के लोगों से सुनते हुए दिखाई देते थे जैसे कि ये चरवाहे थे। निश्चय ही उन्हें नीचा होना पड़ता यदि वे उन ऐसे साधारण लोगों के साथ मेलजोल करते थे तो, और इस तरह के विरोध मत को स्वीकार करना जैसे यह विश्वास करना कि परमेश्वर उसके संदेश को एक ऐसे चरवाहों के झुंड के लिए लाएगा जब उन्होंने सब कुछ इसके लिए तैयार किया था। उन्होंने अपने संबंध को उनके साथ तोड़ दिया होता, उन्होंने अपने पन्नों को दे दिया होता और उस दिन के उनके समाज के झुंड से पहचाना नहीं जा सकेगा क्योंकि उन्होंने इस तरह की एक ऐसी चीज के साथ सहभागी हुए हैं और उनका दिमाग ठीक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? याजक ने उनसे कहा होता, तुम यहाँ मेरे भवन में से इस तरह के विरोध मत के साथ आए हो, इस तरह की एक मूर्खतापूर्ण बात के साथ कि कुछ अनपढ़ बंजारे जो वहाँ पर हैं, जो नहीं जानते भजन संहिता की किताब को नहीं जानते और इस तरह के संदेश का विश्वास करेंगे कि एक दूत उतर आया और उनसे बातें की। लेकिन क्या हो यदि मनुष्य ने कहा होता, मैंने उसके संदेश को प्रमाणित होते हुए देखा है। उसने कहा, मैं तुम्हें तुरंत ही यहाँ से निकलने का आदेश पत्र देता हूँ और इस समाज से बाहर निकल जाओ। समय बदलता है लेकिन लोग नहीं बदलते। यह पूरी तरह से आज भी ऐसे ही होना है। वे उनकी कलीसियाओं से बाहर निकाल दिए जाएंगे। लेकिन उन चरवाहों ने उस स्थान पर पूरी तरह से परमेश्वर के मेमने के साथ शांति को महसूस किया और कोई भी अच्छा चरवाहा इसी बात को करता है। जब एक अच्छा चरवाहा भेड़ के ऊपर परमेश्वर के वचन को साफ होता और प्रमाणित हुआ देख सकता है जिसकी उसने करने की प्रतिज्ञा की है और चरवाहे का घर पर अधिकार है और मैं परवाह नहीं करता कि कोई और भी क्या कहता है, वहाँ पर है परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है और परमेश्वर ने इसे किया है। वे कहते हैं अद्भुत कार्य के दिन बीत गए हैं, वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है जैसे आत्मा का बपतिस्मा, वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यह तो उन प्रेरितों के लिए था, लेकिन एक सच्चे वचन का चरवाहा इसे प्रचार करने दो उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य में कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। पतरस ने पेंटिकॉस के दिन पर कहा, ये प्रतिज्ञा तुम लोगों के लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए है और उनके लिए जो बहुत दूर हैं और यहाँ तक जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। जब कभी भी वो बुलाता है प्रतिज्ञा और वही आशीष सच्ची होती है। और एक सच्चा वचन खिलाने वाला चरवाहा उसे प्रमाणित हुआ देखने दो। सारे संसार के धर्मशास्त्री उसमें से इसे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो जानता है परमेश्वर ने ऐसा कहा है और यह घटित होता है। बस इतना ही, यह हमेशा परमेश्वर का वचन ही होता है। उसका वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किए हुए था और उन्होंने इसे नहीं जाना। उसने इस दिन में उसी बात की प्रतिज्ञा की है। मैं सोचता हूँ यदि हम इसे पहचानेंगे तो। वे अहंकारी और बुद्धिमानों ने इस तरह की एक बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने विश्वास किया यदि इस तरह की एक बात है जैसे कि मसीहा धरती पर है, यह निश्चय रूप से उनकी संस्थाओं के लिए आता या उनके झुंड में होता जो इसे ग्रहण करेंगे या तो ये सही नहीं था। अब जोर लगाकर सोचें, यदि उनके झुंड में नहीं होता है तो तब क्या आपने तब ध्यान दिया? परमेश्वर ने उनके झुंड से कभी भी चुनकर नहीं निकाला, लेकिन उसने उसे चुना जो उनमें से किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि एक झुंड कहता होगा, तुमने देखा हमने क्या किया है, और वह आज उसी तरह की बात को करते हैं। लेकिन परमेश्वर उन्हें चुनता है जो अपने आप में कुछ नहीं, इसी कारण से उसने चरवाहों को चुना है। वे चरवाहे पूरी तरह से उस घर पर थे परमेश्वर के मेमने के साथ जो उनके बीच में था। उसका वचन देदारी हुआ और उनके बीच में था। वे अहंकारी और बुद्धिमानों ने इसे कभी भी ग्रहण नहीं किया, उन्हें छोड़कर वो निकल गए। हम आज के लिए इतना ज्यादा कह सकते हैं या किसी भी युग के लिए, ऐसी ही बात मार्टिन लूथर के दिनों में थी, ऐसी ही बात जॉन वेस्ले के दिनों में थी, ऐसी ही बात पेंटिकॉस्टल के दिनों में थी। लेकिन परमेश्वर रुक जाता है क्योंकि मनुष्य की कोई संप्रदाय नहीं, वो उसकी आत्मा को ठीक आगे बढ़ाता है ताकि उसके वचन को प्रमाणित करे। इसे वैसे ही होना था और वे अपने खुद के दर्जे की विचार सभा में आते हैं या वे इसे ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे वे सारी कलीसियाएं आज बहुत ही हट्टी किस्म की हैं कि वे आज फलाना फलाना करने जा रहे हैं और सारी कलीसियाओं को एक साथ एकत्र करते हैं। यदि वे अब एक संदेशवाद के लिए देख रहे हैं जो सारे प्रोटेस्ट कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स को एक करके एक साथ करके एक बड़ी कलीसिया को बनाए। अब भाइयों, मुझे सैकड़ों विभिन्न धर्मों के सामने प्रचार करने का मौका मिला है और उनमें से बहुत से अच्छे लोग हैं। लेकिन अब आपको याद होगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, हर एक संस्था इसे स्वीकार करना है या तो वो एक संस्था नहीं होगी। ये आपको दबाव डाल रही है। क्या आपने आज का टूसॉन का अखबार पढ़ा, जहाँ पर कैथोलिक याजक लोग नियुक्ति करने में सहायता कर रहे हैं? अखबार में पढ़ा मिसौरी में नियुक्ति के लिए सहायता एक प्रोटेस्ट पादरी की, और कौन इसकी पहचान दे रहा था? प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट, लूथरन, असेंबली ऑफ गॉड। ये आज के टूसॉन के अखबार में है। ओह, ये चौंकाने वाला है। वहाँ पर ये कोई मनुष्य नहीं है, ये तो वे कलीसिया संबंधी शासक के प्रमुख हैं जो वहाँ बातों को घुमाते हैं। वो सिद्धांत जो आपको इसके अंदर डाल देते हैं, आप चाहें या न चाहें, आप अब एक संस्था नहीं बने रह सकते हैं और उस क्रोध से नहीं बच सकते हैं जो धरती पर आ रहा है। और आप देखना, यदि ये सही नहीं है तो हो सकता है ये जब कभी भी हो, मैं चला जाऊंगा और इन टेप्स में से वापस आप सुनना, और तब यदि ऐसा नहीं था तो मैं एक झूठा गवाह हूँ, और ऐसा था तो मैंने आपको सच्चाई को बताया है। वे इसे कहते होंगे यह किसी एक तरह का दुष्ट आत्मा का होता हुआ कार्य है जो उनके सकारात्मक सोच के विरोध में है। आपने आज बहुत कुछ सकारात्मक सोचने के बारे में सुना है। आप बस अपने मन को कहीं पर भी रखिए और इस पर सकारात्मक सोचें, शैतान ये कर सकता है। वहाँ केवल एक ही बात समस्त बातों पर शासन करती है और वह परमेश्वर का वचन है। यदि आप वचन के विपरीत सोच रहे हैं, अपनी सोच को भूल जाएं, वचन पर सोचें। मसीहा उन्होंने सोचा इस तरह की जगह में वो नहीं मिलेगा, यह एक गंदगी के जैसे था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक अच्छा बड़ा महायाजक या एक पादरी व्यक्ति सब धर्म विद्यालय में तैयार हुए हैं, क्या वहाँ उस अस्तबल में आएंगे जो गोबर से भरा हुआ है और एक निर्जन से संदेश को ग्रहण करते हैं, नम्र चरवाहे जिनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, और आकर कहेंगे, देखो मैं तुम्हें इसे साबित कर सकता हूँ, यह वो बालक है, यह वह संदेशवाहक है। और आप जानते हैं उन लोगों ने क्या कहा होगा, वो मनुष्य ईमानदार है, वो जो कह रहा है बहुत ही सच्चा है, लेकिन वह पूरी तरह से गलत है। मैंने लोगों को जीते देखा है, ऐसे जीवन को जीते देखा है, जब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन वह कहेंगे यह सचमुच में गलत है, वह बस नहीं जानता है कि वह किस बारे में बोल रहा है। परमेश्वर वो इस तरह की एक बात को नहीं करेगा। लेकिन यहाँ उनके पास प्रमाण था, और प्रमाण के बाद वहाँ ऊपर जाओ उस अस्तबल की ओर और देखो, वहाँ एक बालक पड़ा हुआ नहीं है। तो वे कहते होंगे तुम किसी दुष्ट आत्मा के द्वारा सम्मोहित हो गए हो, इसी कारण से तुम ऐसा कहते हो। फिर भी यह परमेश्वर के वचन के अनुसार था और वे इसे देखने के लिए बिल्कुल ही अंधे हो गए थे, क्योंकि उनके धर्मशास्त्र ने उन्हें अंधा कर दिया था। क्या ही दुर्भाग्य की बात है, एक ऐसे स्थान में पाया गया, एक ऐसे गंदगी में जिस तरह से ये था, एक अस्तबल में, जबकि उनके पास उनके दिनों के लिए एक सुंदर सा स्थान था, उन्होंने सब कुछ उसके आने के लिए तैयार किया था, और फिर ये सोचते हुए कि वो उतर कर आएगा और चला जाता है और उनके शिक्षकों के लिए संदेश को नहीं लाता है, और क्या इसे एक अनपढ़ चरवाहों के झुंड को देगा, और फिर उसके खुद के पुत्र को लाकर, और क्या उसे एक अस्तबल में जन्म दिया है, एक साधारण से किराए के अस्तबल में, तो एक सूखी घास की चरनी में, क्यों ऐसा नहीं हो सका? वे इसे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही नम्र था और यह बहुत ही साधारण है। इसी तरह से ज्ञानी हमेशा ही इसकी चौकसी करते थे, यह उन्हें उलझा देता है। उन्होंने एक परमेश्वर के लिए देखा वहाँ बाहर की ओर, जबकि वो ठीक वहीं पर था, समझे। वे उस पार कुछ तो देख रहे थे, जबकि ठीक यहाँ पर अभी उनके साथ था मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा, जो कल आज और युगानुयुग एक सा है। उनकी सारी महान बातों को पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन यह वो सच्चाई थी कि वहाँ पर मसीहा था। हम इसे आज जानते हैं, हम इसे आज विश्वास करते हैं, हम इसे आज स्वीकार करते हैं। लेकिन तब यदि परमेश्वर ने इस क्रिसमस के लिए कुछ तो प्रतिज्ञा की है, कुछ तो इस दिन के लिए, और वो इसे इसी तरह साबित करता है, और हम फिर भी इससे दूर चले जाते हैं। हम बिल्कुल उसी दर्जे में से हैं जैसे वे थे वहाँ पर पहले, जो उस दिन में थे, या उन्हें छोड़कर निकल गए, क्योंकि यह हमारे संप्रदाय के स्वाद में नहीं आते हैं। इसी कारण हम इस तरह की क्रिसमस में एक गड़बड़ में है। यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जीवित है, वो आज यहाँ पर है। बाइबल ने कहा वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। उसने संत यूहन्ना 14:12 में कहा, वह जो मुझ पर विश्वास करता है, ना कि वो जो मुझ पर विश्वास करने का ढोंग करता है, वो जो कहता है वो विश्वास करता है। वह जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन उससे भी बढ़कर करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और मैंने उसे अपने खुद के जीवन में देखा है, उन्हीं कामों को और ज्यादा करते हुए जो उसने तब किए थे, फिर इस बाइबल के पन्नों में लिखा हुआ है, और यह आज के ज्ञानी लोगों के सिर के ऊपर से चला जाता है और ऐसे बालकों पर प्रकट किया है जो सीखना चाहेंगे, जिसकी यीशु ने प्रार्थना की। यह सच है, उसने उससे अधिक कर दिया है। वो मैंने उसे देखा है, मैंने मेरे दिन में और अधिक करते हुए देखा है, मेरे 33 वर्ष की सेवकाई में जो मैंने उसके लिए पढ़ा है बाइबल में, करते हुए उन्हीं बातों को और अधिक करते हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं उसने तब क्या किया। क्या आप सोचते हैं सभापति ने उस पर विश्वास किया तो उन्होंने कहा तुम सम्मोहन करने वाले हो, लेकिन ढूंढने के लिए उन्होंने कहां पर ढूंढने में गलती की थी, ढूंढने के लिए ना ही उनकी संस्थाओं ने क्या कहा, लेकिन वचन ने क्या कहा जो मसीह उनके दिनों में करेगा। और वहीं पर आज हम गलती को करते हैं, वचनों में नहीं ढूंढते हैं। यीशु ने उनसे कहा वचनों में ढूंढो, उसमें तुम सोचते हो तुम्हारे पास अनंत जीवन है, और वे जो मेरी गवाही को देते हैं, वे तुम्हें बताते हैं मैं कौन हूँ। ध्यान दें, परमेश्वर पहले से ही जानता था वे इसे करेंगे। यही है महज वो क्यों है, उसे इसे चरवाओं के लिए लेना था। वह जानता था वे इसे नहीं करेंगे, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब आपने देखा क्यों ये चरवाहे होने थे, क्यों चरवाहे, वे धर्मशास्त्री इसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर से चरवाहे क्यों, क्या ये उसके वचन के विरोध में आएंगे, नहीं। वे चरवाहे थे, वे भेड़ों को जानते थे, और यही है जो उसने जन्म लिया था, एक भेड़, एक मेमना। ध्यान दें, वो मेमना था। वे ही केवल इस प्रकार के थे जो इसे स्वीकार करेंगे। एक चरवाहा ही केवल वो चीज है जो एक मेमने को स्वीकार करेगा। वे जानते थे कैसे इसकी देखभाल करनी है, और वैसे ही आज है जब हमें उस मेमने का संदेश मिलता है। अब यह आश्चर्यजनक है, वो सबसे नम्र अनपढ़ व्यक्ति इमानुएल को एक चरनी में सजा रहे हैं। वो सबसे, और उन्हीं दिनों में वहाँ पर बाहर कुछ लोग थे जो अपने धर्मशास्त्र की शिक्षा को दे रहे थे। बहुत बड़ी भीड़, हर कहीं से लोग खींचे जा रहे थे, उस देश के हर जगह से वे इस बलिदान के लिए आए जिसे यहोवा ने कहा था, उसके नथनों में एक दुर्गंध। और यहाँ नम्र चरवाहे थे जो चरनी में इमानुएल को सजा रहे थे। परमेश्वर स्वयं देहधारी हुआ था और एक चरनी में पड़ा हुआ था। देखो हम कैसी महान शिक्षा के साथ हैं, और हमारे सिर पीछे की ओर तने हुए हैं, जैसे हम कुछ तो जानते हैं, और परमेश्वर सारी चीजों को छोड़कर निकल जाता है, समझे। वह उसे करता है जो उसने करने की प्रतिज्ञा की है, और वह हमेशा ही ऐसा करता है। लेकिन इन दीनहीन चरवाहों को सोचो जो वहाँ पर इमानुएल को एक चरनी में सजा रहे हैं। ये सबसे आश्चर्यजनक है, निश्चय ही आश्चर्यजनक है। फिर वहाँ उनके उसे सजाने के बाद, और उन्हें एहसास हुआ कि वो संदेश जिसे वे प्रचार करते आ रहे थे वो प्रमाणित हुआ है, वहाँ पर वे एक दूत के सबसे असाधारण संदेश के साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। अब इसे आज के साथ तुलना करें, बस एक मिनट के लिए रुके और सोचें। मनुष्य परमेश्वर को स्नेह प्रकट कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, उसके लिए जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने सुना था, जो उन्होंने जाना कि सच्चाई थी और संदेश के साथ जो उन बुद्धिमान दिमाग वालों के लिए बहुत ही असाधारण था। यह उनके सारे सिद्धांतों की सोच से विपरीत था, मगर ये सच्चाई थी। यही सच्चाई है, उन्होंने इसे विश्वास किया। और अब मनुष्य की बुद्धि कैसी मूर्खतापूर्ण हो सकती है। तब कहते हैं एक दूत का झुंड उनके लिए पहली क्रिसमस में गीत को गाया। क्या आप इसे कल्पना कर सकते हैं कि एक चरवाहा जो अपने नाम को भी लिख नहीं सकता है, उसमें से एक भेड़ के बाड़े की दुर्गंध आ रही है, नीचे रास्ते पर चलकर जा रहा है, चिल्ला रहा है, सबसे ऊंचाई में परमेश्वर की महिमा हो, हम जानते हैं कि वो धरती पर है। याजक ने कहा उस मनुष्य का दिमाग अपने आपे से बाहर है, उन किताबों पर देखो और देखो अगर वो हमारी सभा का सदस्य है तो, और वो निश्चय ही अपने अनैतिक शिक्षा के द्वारा रुकावट को डाल रहा है। उसे हमारे सामने से दूर ले जाओ, हम लोगों के बीच में रुकावट नहीं होने देंगे। तो ठीक है, तुम मनुष्य के बीच में रुकावट को डाल सकते हो और परमेश्वर की नजर में महिमामंद हो सकते हो या अपने चुनाव को ले सकते हो, क्योंकि याद रखना उस दिन के सिद्धांत का स्वाद परमेश्वर के वचन के साथ सही नहीं बैठता था। वहाँ इसके 996 विभिन्न स्वाद नहीं है, इसका एक ही स्वाद है, एक वचन, एक परमेश्वर, इतना ही है। ये कह रहे हैं दूतों ने पहले क्रिसमस पर उनके लिए गाया है, और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें एक दूत से संदेश मिला है, एक दूत उनके लिए प्रकट हुआ और उन्हें एक संदेश को दिया, और उन्होंने जाकर पाया है कि वो संदेश सच्चा है। और ये कह रहे हैं इसके अलावा वह दूत ने पहली क्रिसमस पर उनके लिए गाया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, वे कहते हैं वो कंगाल व्यक्ति, उनके बीच में कभी इस तरह की बात होने के जैसा उनके पास कुछ भी नहीं है, तुम जानते हो। इसलिए यह एक प्रकार का उनके लिए अनोखी शिक्षा थी, और इसी कारण से वे इसे वचनों में नहीं ढूंढ पाते हैं। यह उनके लिए इसे ढूंढने के लिए नहीं था, उन ज्ञानियों के लिए अनोखा, इस तरह का अनुभव उनके लिए कभी नहीं हुआ था, अविश्वसनीय, लेकिन फिर भी यह सच्चाई थी। यही सच्चाई है, हम जानते हैं यही सच्चाई है। सोचें, मसीह ने जो पहले परिवर्तन किए और पहला झुंड भेड़ों को चढ़ाने वाले थे, ना ही कोई पादरी, भेड़ों को चराने वाले गडरिए चरवाहे ही क्यों? ध्यान दे, परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे उसके लिए जो उन्होंने देखा और सुना था। दूतों को पहली बार मनुष्य जाति के लिए गाते हुए सुना गया था, इससे पहले दूतों ने मनुष्य जाति के लिए कभी भी नहीं गाया था। और उन गीत गाने वाले झुंडों की ओर देखें, कैसे वे खड़े होते हैं और प्रशिक्षित हैं, और उन आवाजों से प्रशिक्षित हैं, उन्होंने मसीह के जन्म पर गाया होगा, और वे उन सबको छोड़कर निकल गए थे। और वे दूत नीचे उतर आए और साधारण से चरवाहों के लिए गाया, ना कि उन पादरियों को कपड़ों को पहने हुए थे, लेकिन चरवाहों के कपड़ों को पहने हुए थे। और देखो जिसे वो पहला संदेश मिला, ये असाधारण बात है। और इसे कहाँ दिया गया था? ना ही गिरजों को, लेकिन जंगल में, बाहर जंगल में, जहाँ प्रभु का दूत आया था, कलीसिया में नहीं, लेकिन जंगल में। उसका कलीसिया में स्वागत भी नहीं किया गया, उन्होंने सोचा वो था, उन्होंने सोचा उनके पास ये था, लेकिन परमेश्वर ने साबित किया ये गलत था। वो इन पत्थरों से अब्राहम की संतान को खड़ा कर सकता है, यह सही है। पहली बार दूतों ने एक समारोह के लिए जो कभी गाया था, तो ये स्वर्ग में था। यदि आप अय्यूब की किताब में से देखें, अय्यूब 38:7, जबकि मैं आप में से कुछ लोगों को लिखते हुए देखता हूँ, जब परमेश्वर ने उसकी पहली सृष्टि बनाने की योजना बनाई जो धरती थी। अय्यूब महान व्यक्ति था, होशियार मनुष्य, और उसके पास सब प्रकार की बुद्धिमत्ता थी। उसने कहा, जब मैं बाजार को जाता हूँ, वे युवा राजकुमारियाँ, वे सब मेरे आगे झुकती हैं, वे बस मेरे बुद्धिमत्ता के पल को देखना चाहती हैं, और वो समझ नहीं पाया क्यों उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा था। और इसलिए परमेश्वर ने उससे पूछा, कहा, अपने आप को पुरुष की नाई खड़ा कर, क्योंकि मैं नीचे तुझसे बातें करने के लिए आ रहा हूँ। और जब परमेश्वर नीचे एक चक्रवात में उतर कर आ गया, उसने कहा, अय्यूब, मेरे धरती की बुनियाद डालने से पहले तू कहाँ पर था जब भोर के तारों ने इकट्ठा होकर गाया और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्लाए, तब तुम कहाँ पर थे अय्यूब? और वो उसी समय जमीन पर पसर गया, तुम कहाँ पर थे? देखो, पहली बार दूतों ने एक समारोह में कभी गाया, वो स्वर्ग में था, लेकिन पहली बार उन्होंने कभी धरती पर गाया, तो वो परमेश्वर के जन्म पर चरवाहों के लिए गाया। इमानुएल धरती पर था, पहली बार मनुष्य जाति ने दूतों को कभी गाते हुए सुना, वे नम्र चरवाहे थे। जब हम हमारी स्त्रियों के लिपे पुते हुए चेहरों को लेते हैं, छोटे कटे हुए बाल, छोटी निकरे पहने हुए और इस प्रकार के कलीसिया के वस्त्र को उनके चारों ओर झुलाते हुए और उन्हें खड़ा करते हैं और कुछ तो गाते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर इसे सुन लेगा, उसके पास उस ओर वे दूत हैं जो उसके लिए गाते हैं, जब से वे इससे पहले उसने कभी एक मानव जाति को बनाया। नहीं नहीं, बाहर जाकर ऐसे जीते हैं और ऐसे कपड़े पहनते हो जैसे परमेश्वर के लिए घृणित है, और तुम कैसे परमेश्वर के होने की अपेक्षा कर सकते हो? तुम कहते हो ठीक है, मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ। तुम कहाँ पर थे जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी? मैंने किस वस्तु पर रखा? वो धुरा कहाँ पर है जहाँ वे मुड़ते गए? तुम तब कहाँ पर थे? क्या आप सोचते हो परमेश्वर हमसे हमारी कुछ बुद्धिमता के लिए पूछेगा? हमारी बुद्धिमता उसके लिए केवल मूर्खता है। वो करता है जो वो कहता है कि वो करेगा। अब ध्यान दें, परमेश्वर एक और सृष्टि बनाने के लिए तैयार कर रहा है। वो नाशमान पृथ्वी को बना रहा है, नाशमान जीवन दूत स्वर्ग में गा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक नए जीवन को बना रहा है, मनुष्य के लिए अनंत जीवन, और वो दूतों के जरिए से उसके अपनों के लिए गा रहा है, धरती पर न कि स्वर्ग में। स्वर्ग के पास अनंत जीवन था, समझे? और उसने गीत गाया, उन्होंने स्वर्ग के लिए गाया। जब वो नाशवान सृष्टि आती है और यहाँ अविनाशी सृष्टि आ रही है, और अब वे धरती के लोगों के लिए गा रहे हैं, पहली बार चरवाहों के लिए, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? उसने एक नई सृष्टि का आरंभ कर दिया था। ये क्या था? एक खुद अपनी सृष्टि, परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। यही है बाइबल ने कहा, परमेश्वर के सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर मनुष्य के रूप में सृष्टि हुआ, यीशु मसीह में उसका पुत्र जिसमें परमेश्वर ने वास किया। उसने उसके भवन को मांस और हड्डियों का बनाया और उस भवन में रहा। परमेश्वर इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। उसने अपने लिए एक घर को बनाया ताकि उसमें रहे, जिससे वो इसके जरिए से उसके वचन को उसके अपनों को प्रतिबिंब कर सकता है। आप जान जाते हो परमेश्वर क्या है जब आप मसीह को देखते हो। याद रखना, वहाँ एक राजा के जन्म पर हमेशा ही गीत गाना होता है। कितने लोग ये जानते हैं? निश्चय ही आप जानते हैं। तो ठीक है, अब क्या आप सोचते हो यदि इस राजा ने वहाँ पर जन्म लिया होता तो एक स्त्री कहीं तो गिरजाघर में आई होती और कहती, तुरंत अभी एक बिस्तर को तैयार करो और डॉक्टर को बुलाओ, मैं धरती पर इमैनुएल को लाने जा रही हूँ। नाजरीन की एक निर्जन स्त्री, उस सबसे निचले शहर में, वो टूसॉन और उन बाकी के किसी भी शहरों से भी वो गंदा था, और फिर भी ये छोटी स्त्री उस बड़े महायाजक की ओर दौड़कर आती और कहती, मैं इमैनुएल को जन्म देने जा रही हूँ। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया होता, वे ऐसा जरूर करते, वे निश्चय ही ऐसा करते। उसके लोगों के बीच में इसे लाना एक विरोध मत के जैसा है। वो इसके लिए नहीं खड़ा होगा, न ही वो आज खड़ा होगा, लेकिन बिल्कुल वैसे ही ये हो रहा है, ठीक वैसे ही हो रहा है। ध्यान देना, वहाँ गीतों का गाना होना है। राजा उसने नहीं गाया होगा, लोगों ने उसके लिए नहीं गाया होगा, क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, और यही वो कारण है यहाँ पर ये आता है। शायद आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही कारण है कि आज लोग परमेश्वर की स्तुति करने से लज्जाते हैं, वे मसीह से लज्जाते हैं। वे बड़े गिरजाघर पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करेंगे। वे उनके गिरजे संबंधी मतों में इतने स्थिर हैं, वे इसे ग्रहण नहीं करेंगे। परमेश्वर किसी को तो पाने जा रहा है जिसके जरिए उसे स्तुति मिल सकती है। वो पत्थरों से इब्राहिम की संतान को खड़ा करने के लिए सक्षम है, जैसे मैं योन्ना के पद को फिर से हवाला देता हूँ। ध्यान दे, उसके अपने उसके लिए जरूर गाते हैं, और तब उसके अपने वे दूत थे और उन्होंने उसके चरवाओं के लिए गाया जिन्हें उसके संदेश को लेकर जाना था। इसे पहले किससे सुनना चाहिए? निश्चय ही जो उसके हैं। यही है वे जो राजा के गीत को गाते सुनेंगे, जो उसके अपने होंगे। और उसके अपने कौन थे? एक प्रकार के असाधारण, क्या ऐसा नहीं है भाइयों? ये उसके पादरी नहीं थे, ये धर्मशास्त्री नहीं थे, ये सही है, वे संस्थागत के लोग नहीं थे, नहीं, ये चरवाहे थे। क्यों? वहाँ पर एक भेड़ ने जन्म लिया था, यही वो कारण था, समझे? उसके अपनों ने इसे सुना, जिन्हें परमेश्वर जानता था कि वे विश्वास करेंगे। परमेश्वर ने उसके संदेश को उनके लिए भेजा जो उसे विश्वास करेंगे। वो ही सारी बुद्धिमता है, वो जानता है उसके संदेश को कहाँ भेजना है जो उसे विश्वास करेंगे। स्वर्ग में जो सबसे ऊंचा है, धरती पर सबसे निचले मनुष्य के लिए भेजा। यीशु ने मत्ती 5 में कहा, धन्य है जो आत्मा में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मरियम ने, यदि आप उन वचनों को लिख रहे हैं तो ये मत्ती 5 में है, यदि आप वचनों को लिख रहे हैं तो जो मैंने यहाँ वचनों को लिख के रखा है। मरियम ने लूका 1:52 में कहा, जब वो आत्मा से अभिषेकित हुई थी, पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, उसने कहा उसने दीन जन को ऊंचा किया है। मरियम ने कहा, जो यीशु की माता थी, कहा उसने दीन जन को ऊंचा किया है। लूका ने भी ये कहा, उन साधारण लोगों ने उसे आनंद से सुना, न ही उन विशिष्ट वर्ग के लोगों ने, वे धर्मज्ञानी, नियम के विद्वान और उसके धर्मशास्त्री, लेकिन साधारण लोगों ने उसे आनंद से सुना, निचले उपाधि के लोगों ने। उन सारे पवित्र वचनों के पहलू से छुटकारे का संदेश चरवाहों के द्वारा दिया गया था और भेड़ के जरिए से। अब मैं नजदीक आ गया हूँ, क्योंकि हम बंद करने के नजदीक आ रहे हैं। मैं बस बहुत से वचनों को छोड़ रहा हूँ, जिससे मैं आपको इस विचार को समझा सकता हूँ। उन सारे वचनों के पहलू से छुटकारा चरवाहों के और भेड़ के जरिए से प्रतिनिधित्व किया गया था। यह सही है, हम सब इस पर सहमत हैं। क्यों? ये छाया और नमूने में था, और जो कुछ, यदि मेरे हाथ को कभी नहीं देखा था, और यहाँ नीचे मैं मेरे हाथ की छाया को देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरी 5 उंगलियाँ हैं, मैं जान जाऊँगा कि यह प्रतिबिंब हो रहा है। नेगेटिव एक वास्तविक को प्रतिबिंब कर रहा था, और इसी कारण से संदेश हमेशा ही आया है, भेड़ के द्वारा छुटकारा, क्योंकि आरंभ से ही, और ये भेड़ के जरिए से था और चरवाहों के द्वारा था कि उसने खुद को प्रकट किया, सारे छाया और ये नमूने थे। अब आओ आरंभ की ओर देखें। आदम और हवा वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए थे ताकि उनके लिए संदेश को सुने। उन्होंने भेड़ की खालों को लगभग उनके कमर पर लटकाए हुए थे। वो पहला संदेश जो कभी सुना गया, वो मरे हुए भेड़ की खाल के सबसे ऊपर दिया गया था, जिसे परमेश्वर ने मारा और आदम और हवा को इसमें लपेट दिया। उसके बाद उन्होंने अपने खुद की अंजीर के पत्तों की धार्मिकता को बनाने की कोशिश की। यह काम नहीं करेगा। भेड़ के बलिदान ने आरंभ से लेकर एक प्रायश्चित की ओर निर्देशित करता आ रहा है, भेड़ का बलिदान। अब हम इस पर अभी बंद कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे ये चरवाहे ही क्यों होने थे और इसे क्यों होना था, उसे एक भेड़ क्यों बनना था। अब पुराने नियम के नबियों ने अपने आप को भेड़ की खाल से ढाके हुए थे, हम ये जानते हैं, सही है। उनके विश्वास को आने वाले सिद्ध मेमने के वचन को जाहिर कर रहे थे, इसलिए वो नबी थे। अब परमेश्वर का वचन एक धर्मशास्त्री के पास नहीं आता है, वहाँ पर कोई नहीं, वो एक है जो इसे गड़बड़ करते हैं, यह सही है। वहाँ पर ऐसी कोई भी बात कभी नहीं कहती है, आप कहते हैं ठीक है, यह व्यक्ति एक धर्मशास्त्री है, यह बस उसे उस व्यक्ति को वहाँ से बहुत ही दूर कर देता है, उस वचन से जो कुछ भी वो जानता है, समझे। प्रभु परमेश्वर का वचन, न बदलने वाला परमेश्वर, जो कभी नहीं बदलता है। बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर का वचन हमेशा ही नबियों के पास आया है, ना ही धर्मशास्त्रियों के लिए या धर्मज्ञानियों के लिए, लेकिन उन नबियों के लिए, और वे हमेशा ही हर समय ठुकराए गए और इनकार किए गए हैं। अक्सर वे नबी गडरी भी होते थे, नबी अपने ऊपर भेड़ की खाल टांगे हुए होते थे, क्योंकि उनका भेड़ की खाल का पहनावा होता था जिन्हें वे चढ़ाते थे। और वो पहला संदेश एक दोषी पीढ़ी के लिए था, जो भेड़ों की खाल के सबसे ऊपर था। वे नबी, मैं फिर से कहता हूँ, भेड़ों की खालों को अपने चारों ओर टांगे हुए होते थे, कारण वे इसके द्वारा जाहिर कर रहे थे कि उन्होंने विश्वास किया है, वहाँ पर एक सिद्ध मेमना उस बलिदान के लिए आ रहा है, और परमेश्वर का वचन उनके लिए आया जो भेड़ की खाल के सबसे ऊपर था। ये गडरिये, मतलब ये नबी अक्सर गडरिये होते थे। इब्राहिम एक गडरिया था, इजाक एक गडरिया था, याकूब एक गडरिया था, मूसा एक गडरिया था, दाऊद एक गडरिया था, सारे परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करने वाले गडरिये थे। अब हम देखने जा रहे हैं ये क्यों गडरिये के लिए आया। वे जानते हैं वे बिना गडरिया के भेड़ निर्बल होती है, जिससे उन्हें निर्देशित करे। वे एक भेड़ पूरी तरह से निर्बल होती है, वो अपने आप से नहीं जा सकती है। इसी कारण से परमेश्वर ने उसके विश्वास करने वाले बच्चों से भेड़ के निमित्त तुलना की है, उन्हें निर्देशित किया जाना है। लेकिन देखें आपको क्या निर्देशन मिल रहा है। एक बकरी के पीछे मत जाना, वो तो तुम्हें चलाकर कसाई खाने की ओर लेकर जाएगी। परमेश्वर ने कभी भी हमें बकरी नहीं दी, उसने हमें उसके पुत्र को दिया है, वो पवित्र आत्मा, ताकि हमारी अगुवाई करे। वह हमारा अगुवा है, ना ही कोई मनुष्य, ना ही मनुष्य का बनाया हुआ गडरिया, लेकिन परमेश्वर ने एक गडरी को दिया है जो भेड़ों को भेड़ों का भोजन खिलाता है। अब आप एक सुअर को ले लें और आप उस सुअर से कहें, मैं तुम्हें एक मेमना बनाने जा रहा हूँ, और आप उसे धो दीजिए और आप उसके पैरों के नाखूनों को रंग से पोत दें और इत्यादि, और उसे एक भेड़ की तरह का खाना दे दें, उसे किसी प्रकार का आहार दे दें, और उसे बाहर जमीन पर रख दें जहाँ पर एक भेड़ का झुंड होता है, जानवरों के खाद्य के खेत या ऐसा ही कुछ, और यदि वहाँ पर कहीं पर एक कुंड है, वो सुअर सीधा उस कीचड़ के कुंड की ओर चला जाएगा जैसे वो जा सकता है। देखा, क्योंकि उसका स्वभाव अब भी एक सुअर है, और इसी कारण से आज वो कलीसिया के सदस्य संसार की बातों में मन लगाते हैं। देखो, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं बदलता है, वे किसी भी प्रकार का एक गिरजे का धर्म विद्यालय के सुअर का खाना खाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं, वे इस पर नहीं खड़े हो सकते हैं। वे अंदर जाकर और वचन को सुनते हैं। आप जानते हैं, संसार में सबसे बड़ा ढोंगी वह एक पुराना कौवा है। बाइबल में वहाँ पर दो पक्षियों को जहाज के बाहर भेजा गया था, वह पुराना कौवा बाहर गया और वो कभी भी वापस नहीं आया, क्योंकि वह एक गिद्ध है, एक मुर्दों को खाने वाला है। वो मरे हुए देहों पर, शवों पर बैठ गया और मरे हुए शवों से अपना पेट भरने लगा, लेकिन जब उसने पिंडुकी को बाहर छोड़ा, वो पिंडुकी उस दुर्गंध पर नहीं खड़ी हो पाई, लेकिन वह पिता के घर और नूह के पास वापस आ गया और दरवाजे पर मारने लगा जब तक नूह ने उसे अंदर नहीं ले लिया। अब एक कौवा यहाँ पर बैठकर और दिन भर एक मरे हुए घोड़े को खा सकता है और वहाँ बाहर खेतों में जाकर पिंडुकी के साथ दाना खा सकता है, लेकिन एक पिंडुकी वहाँ उड़कर और मरे हुए घोड़े को नहीं खाएगी और फिर आकर दाने को खाए, एक चीज उसे मार डालेगी। देखना, पिंडुकी के पास कोई भी पेट नहीं होता है, वो इसे नहीं पचा सकता है। और जब कोई परमेश्वर का पिंडुक, कोई भी वचन खाता हुआ पिंडुक या भेड़, एक सांप पशु, जब आप उन्हें जाकर संसार की वस्तुओं को देते हैं, वे जानते हैं उनके गुरु ने कहा है, वह जो संसार से प्रेम रखता है या संसार की चीजों से, यहाँ तक परमेश्वर का प्रेम उसमें है भी नहीं। आप इसे परमेश्वर के वचन के लिए कुछ तो विपरीत देते हैं, वह इस पर नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन शैतान इसे ले सकता है और संसार को भी ले सकता है, और इन सबको परमेश्वर का कह सकता है, आप तेल और पानी को नहीं मिला सकते हैं, यह बस मिश्रण नहीं होगा। वे ये सारे चरवाहे जानते थे, वे जानते थे कि भेड़ बिना चरवाहों के निर्बल है, और वे चरवाहे थे और वो जानते थे कि उन्हें निश्चय ही निर्देशित किया जाना है। क्या ही ये आज एक दयनीय बात दिखाई देती है, वे भेड़ को सुअर का खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भेड़ इसे नहीं खाएगा। नहीं श्रीमान, देखो, वो भेड़ को वहाँ पर सुअर का खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, और जब परमेश्वर का वचन आया, वे सुअर का खाना, वो इतने आदि हो गए थे, उन्होंने वचन को नहीं जाना। और यही है जो आज होता है, जब वही बात प्रमाणित हुई है और साबित हुई है कि परमेश्वर एक फलाना बात को करेगा, फिर वह सुअर का खाना खाने में इतने आदि हो गए हैं, और सुअर का खाना खाने वाले जब तक आप तो वहाँ उनसे कोई बात नहीं करता है, वे इसे सुनना भी नहीं चाहेंगे। ऐसा ही है वो कुत्ता, बाइबल ने कहा जैसे एक कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है और एक सुअर कीचड़ में वापस चला जाता है, वे वैसा ही करते हैं, वचन को सुनते हैं और ठीक वापस उसी पुराने कीचड़ की ओर लौट जाते हैं और कहते हैं ये कट्टरपंथी है, इस तरह की एक बात का विश्वास मत करना। परमेश्वर भेड़ आज वैसा ही करता है, वो वचन भोजन में ही भरोसा करता है, वे किसी और भोजन को नहीं लेंगे। आप उन्हें एक गिरजे संबंधी भोजन को नहीं ले सकते हैं, एक सच्चा भेड़ नहीं नहीं। आप उनसे जाकर कहें, अब देखो हम सब एक साथ इकट्ठा होने जा रहे हैं, अब यीशु ने प्रार्थना की कि हम सब एक हो सकें। आपने अभी तूफान पर ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ दिनों पहले सुना होगा, लेकिन यह झूठ है, यीशु ने कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं की। कैसे आप वचन को स्वयं में दोषी ठहरा सकते हो या स्वयं में उल्टी प्रतिक्रिया कर सकते हो? तब तो परमेश्वर और मनुष्य में कुछ फर्क नहीं है। यीशु ने कहा कैसे दो जन एक साथ चल सकते हैं जब वे आपस में सहमत न हो? आप कैसे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और कैथोलिक को लेने जा रहे हैं और सबको इकट्ठा करके और एक बनाएंगे? आप एक मनुष्य के नेतृत्व के नीचे एक हो सकते हैं, लेकिन यीशु ने कहा कि वे एक हो सके जैसे आप और मैं एक हैं। अब वो चाहता है कि हम सब उसमें एक हों जो कि वचन है। आमीन। वहाँ पर है ये पिता के साथ एक होना, और पिता वो पुत्र है, एक ही है, और ये वही वचन है। वचन प्रमाणित हुआ इस दिन में, स्वयं प्रदर्शित हो रहा है जैसे ये पहले के दिन में प्रदर्शित हुआ, जिससे आप एक हो सके। ध्यान दें, उसने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। वो पिता जिसने उसे भेजा था उसमें चला गया ताकि वचन को साबित करे, और उसी यीशु ने जिसने उसके लोगों को भेजा लोगों में चला जाता है जिसे वो भेजता है और कहता है जो काम मैं करता हूँ वह तुम भी करोगे। निश्चय ही उसने प्रार्थना की कि हम एक हो सके। उसके साथ एक होना है, ना ही एक संस्था के साथ, ना ही एक सिद्धांत के साथ, लेकिन परमेश्वर के साथ एक होना है, क्योंकि परमेश्वर उसके वचन में एक है और यीशु और परमेश्वर एक थे, और आप और मैं और वचन को एक होना ही होगा। यह सही है, हमें वचन के साथ सहमति में एक होना होगा, ना ही कोई और क्या कहता है। इसका कोई व्यक्तिगत अनुवाद नहीं है, इसे ले लो यह जो कहता है और इसे विश्वास करो, और परमेश्वर इसे प्रमाणित करेगा और साबित करेगा यह सही है। आप सोचते हैं यह केवल उन चेलों ही के लिए था, इसके लिए उसके वचन को ले लो, जाकर इसे एक बार परख कर देखो, आप देखेंगे यह आपके लिए बिल्कुल वैसे ही काम करेगा कि जैसे उसने प्रतिज्ञा की है। हाँ श्रीमान, वे सुअर का खाना नहीं खाएंगे, उनके पास होने के लिए भेड़ के आहार को होना है। संत यूहन्ना 10 ये जाहिर करता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है, और यदि वो वचन है तब हमारे पास किस प्रकार की एक आवाज़ है। मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को जानती है, वे अजनबी की आवाज़ के पीछे नहीं जाएंगे, समझे। यीशु ने कहा एक अजनबी की आवाज़ के पीछे नहीं जाएगी, इसलिए उसकी भेड़ एक अजनबी की आवाज़ का अनुकरण नहीं करेगी, वे उसके पीछे नहीं जाएगी। वे नबी चरवाहे और भेड़ सारे उसके आने को जाहिर कर रहे थे। अब न बदलने वाला परमेश्वर उसके न बदलने वाली योजना में जो इस दिन का वचन है उसे देखे। अब कुछ मिनट के लिए न बदलने वाले वचन को सोचेंगे। अब देखना, यदि मूसा नूह के संदेश के साथ आया होता तो यह काम नहीं करता, यदि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मूसा के संदेश के साथ आया होता तो यह काम नहीं करता, यदि यीशु नूह के या मूसा के संदेश के साथ आया होता तो यह काम नहीं करता, और वेस्ली लूथर के संदेश के साथ आया होता तो यह काम नहीं करता, यदि पेंटिकॉस्ट वेस्ली के संदेश के साथ आए होते तो यह काम नहीं करता। हमने अभी इस बयान को सुना है। अब परमेश्वर बस आगे बढ़ता जा रहा है, केवल वचन की ओर देखें, आप देखेंगे हम कहां पर हैं। तब वो पहली घोषणा करने के लिए वे वह चरवाहे क्यों नहीं होने चाहिए, ये सारे नबी ये सारे महान व्यक्ति चरवाहे थे, तो फिर क्यों परमेश्वर जो न बदलने वाला है उसके कार्यविधि को ठीक यहाँ पर क्यों बदलना चाहिए और इसे उन धर्मशास्त्रियों के लिए लाना चाहिए। ये चरवाहे थे, उस सिद्ध मेमने का आना उस पाप के बलिदान के लिए जो चरवाहों के पास आना है। वे चरवाहे किसी भी चीज से बेहतर अपनी भेड़ को जानते हैं, एक चरवाहे के जैसे कोई भी भेड़ को नहीं जानता है, वो उसके लिए प्रशिक्षित हैं, और यह भी जानता है कि वह किस प्रकार का भोजन खाएंगे, वह जानता है कि भेड़ क्या खाएगा और उसके भेड़ क्या खाती हैं, उसके द्वारा जानता है। वो आपने एक भेड़ को देखा है वहाँ जाते हुए जहाँ सूअरों के खाने का बाड़ा होता है और सूअर के खाने को खाना आरंभ करे, आप कहेंगे उस गंदगी को दूर करो, देखो, इसलिए परमेश्वर जानता है उन्हें कहाँ भेजना है। अब आइए हम उस एक यहोवा के महान चरवाहे नबी को पुकारेंगे ताकि ये पक्का करे कि परमेश्वर उन नबियों में था भेड़ों की खाल के नीचे। अब देखना, हम पहले मूसा पर बोलेंगे, आइए हम उस पर देखें, उसकी सेवकाई हमें दिखाएगी कि यहोवा उसके चरवाहे नबी में था। अब हम एक को ही लेंगे, यदि हमारे पास समय रहा तो लगभग अगले 10 मिनटों के लिए हम उसमें से दो को लेंगे, लेकिन हो सकता है एक को ही लेना ठीक होगा। मूसा यहोवा यहाँ पर अपने आप को प्रदर्शित करता है इस नबी चरवाहों में ताकि उसकी सेवकाई को प्रमाणित करे और इज़राइल के प्राचीनों को बुलाने के लिए और फिरौन के लिए। ध्यान दें, यह चरवाह नबी अब वह हमेशा ही उसके नबियों को अलौकिक चिन्ह को देता है ताकि यह प्रमाणित करे कि यह उनमें परमेश्वर था, क्योंकि अलौकिक बातों के घटित होने के बिना वह परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती है। यहोवा कभी भी अलौकिक बातों के दिखाए बिना वो प्रकट नहीं हुआ, इसे होना ही होगा, इसलिए वह हमेशा ही अपने आप को प्रमाणित करता है कि वो इन नबियों के साथ था, इसे साबित करने के द्वारा कि वे क्या भविष्यवाणी कर रहे थे यदि वे उसके वचन के अनुसार था तो। अब वो पहला चिन्ह उसने नबी चरवाहे को दिया, देखो उसकी छड़ी को एक सर्प में बदल दिया, दूसरा उसके हाथ को कोढ़ में बदल दिया, तीसरा मिस्र की नील नदी से पानी को लिया और इसे लहू में बदल दिया। अब वो मिस्र को और इसराइल को प्रमाणित करने के लिए उसे तीन चिन्हों को देता है कि वो परमेश्वर का कहा हुआ वचन है। अब याद रखना, मूसा ने इन बातों को सृष्टि में लेकर आया, यह सही है, मिट्टी को लेकर और हवा में फेंका और कहा पिस्सू हो जाएं, और पिस्सू आ गए, कहा मक्खियां आ जाएं, और मक्खियां आ गई, मेंढक होने दो और मेंढक आ गए, उसने सृष्टि में लेकर आया। अब एक मनुष्य सृष्टि नहीं कर सकता है, लेकिन यह आरंभ से लेकर मनुष्य नहीं था, यह तो उसके नबी चरवाहों में वो यहोवा था। आमीन। देखो वह तीसरा चिन्ह जो उसे वो देता है, जो उसके व्यवसाय से संबंधित नहीं था, न ही उसके व्यक्ति से संबंधित था, जो उसका तीसरा चिन्ह है। ध्यान दें, पहले दो चिन्ह उससे संबंधित थे, उसके खुद से और उसके व्यवसाय से संबंधित थे, और वे केवल दो ही चिन्ह थे जिसे बाइबल बताता है कि जिनके पास एक आवाज थी और दूसरे चिन्ह के पास एक आवाज नहीं थी। लेकिन दो चिन्ह जिसे उसके खुद के व्यक्ति से दिया गया था और उसके लोगों के लिए था, उन चिन्हों के पास आवाज थी। लेकिन ये तीसरा चिन्ह, अब ध्यान देना, इसे दिया गया था, और वो चिन्ह, वो तीसरा चिन्ह, वो मृत्यु का चिन्ह था, पानी लहू में बदल रहा है। यदि आपका लहू पानी में बदल जाएगा, तब आप मर जाओगे, और जहाँ पर लहू होता है, बहता हुआ लहू एक मृत्यु का चिन्ह है, इसलिए यह फिरौन के लिए था। वो तीसरा चिन्ह, नील नदी का पानी लहू में बदल जाना, यह फिरौन के लिए उसके संदेश को दिखाता है। यह दिखाता था कि हमारा परमेश्वर उस नील नदी के ऊपर परमेश्वर है, नील के परमेश्वर के ऊपर वो परमेश्वर है, वो सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर था, और वो उस राष्ट्र पर मृत्यु को लाने जा रहा था, और यही है जो लहू का वो चिन्ह था। ओह प्रभु, मृत्यु का सीधा सीधा चिन्ह वो लहू। लेकिन दूसरे दो चिन्हों के पास भविष्यवाणी की आवाजें थी। मैं आशा करता हूँ आप लोग लकीरों के बीच में पढ़ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वे दूसरे चिन्ह के पास भविष्यवाणी की आवाजें थी उस इसराइल के लिए जो उनके भविष्य से संबंधित था। अब आपके लिए जो ज्यादा समय नहीं हुआ, वहाँ ऊपर पर्वत पर थे जब वो चट्टान उछलने लगी थी। अब और वो करने जा रहा था, वो प्रकृति को बदलने जा रहा था, ताकि उनके लिए इस काम को करे। इस खंभे पर ध्यान दे, सर्प पर ध्यान दे, लाल समुद्र पर ध्यान दे, और जो कुछ भी उसने अब किया है। उस चरवाहे की लाठी की ओर देखो, उनके निकलने के लिए एक रास्ते को बना रही है। वह छड़ी जो चरवाहे के हाथों में थी, हर एक धर्म ज्ञान को छोड़ते हुए और उन सारी बातों को जिसे याजकों ने कही थी, और उस चरवाहे की छड़ी ने उनकी अगुवाई की, ठीक वहाँ से नीचे हर एक को जो असंभव बात है उसमें से होते हुए, यह मनुष्य के लिए असंभव बातें हैं। जब फिरौन ने इसे सोचने की कोशिश की, पहाड़ों में जल का झरना फूट पड़ा था और पानी को उछाल दिया था, फिर इसे लहू में बदल दिया था, तब परमेश्वर ने आकाश से अग्नि की बारिश को भेजा, और उसने आकाश से ओले बरसाए, और उसने धरती पर जू को बरसाया, और सब बातों को किया। उसने क्या किया? और उन चरवाहों के छड़ी के द्वारा, न ही कोई लिखी हुई किताब, न ही धर्मशास्त्र के विचार, लेकिन इन चरवाहों की छड़ी से। हम कुछ मिनट में इसमें आ रहे हैं, एक चरवाहे की छड़ी, इसने इसे किया। न ही एक संस्थाओं की प्रार्थना की किताब, लेकिन एक चरवाहे की छड़ी। चरवाहे की लाठी उसके भेड़ को अगुवाई कर रही है, रास्तों को साफ करती हुई, जब वे उस देश में प्रतिज्ञा किए हुए वचन की ओर बढ़ रहे थे। क्या ही आज के चरवाहों के छड़ी की एक सुंदर बात है, आज उसकी भीड़ों को प्रतिज्ञा देश की ओर अगुवाई कर रहा है। सारे धर्म शास्त्री और संसार का जो कुछ भी है उसे छोड़कर, और संसार की बातों को और संस्थाओं को, वो सब कुछ मार्ग को खोलते हुए और उसके वचन को सच्चा साबित करते हुए वह चरवाहों की छड़ी आगे बढ़ रही है। अब ध्यान दें, वही चरवाहों की छड़ी जो भीड़ की अगुवाई कर रही थी, क्या आप इसे विश्वास करते हैं? उसने निश्चय ही भीड़ की अगुवाई की। उसने उन्हें अपने हाथ में छड़ी के साथ मिस्र से बाहर निकाला था। हम इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य बात पर आने के लिए उसने भीड़ की अगुवाई की और इसे ठुकराने पर न्याय को भेजा। वही छड़ी जो एक के लिए आशीष बनी और दूसरों के लिए एक श्राप बनी, वही पानी जिसका नूह प्रचार कर रहा था, जिसने उसे बचा लिया और संसार को दोषी ठहराया, वही छड़ी जिसने इसराइल की प्रतिज्ञा देश की ओर अगुवाई की, उन्हें दोषी ठहराया जिन्होंने नबी चरवाहे का अनुकरण करने से इंकार किया। यह सही है, उनके लिए यह न्याय की छड़ बन गई। प्रकृति, ध्यान दें, जब परमेश्वर उसकी प्रकृति में बोलता है, यदि हमारे पास समय होता था, मैंने यहाँ पर कुछ लेख को लिख के रखा है। परमेश्वर उसकी प्रकृति में बोलता है, हमारे पास इसे साबित करने के लिए समय नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में साबित करते हुए पीतल के सर्प के द्वारा जो चरवाहे की भेड़ की लाठी पर था, जिस पर उसने सर्प को उस लाठी के चारों ओर लपेटे हुए था, उस जंगल में यह बीमारी और पाप के लिए आने वाले सच्चे प्रायश्चित को बता रहा था। वह छड़ी खुद ही फिरौन के सामने एक सर्प में बदल गई। उसी फिरौन ने जादूगरों के द्वारा इसकी नकल की, और वैसे ही आज आधुनिक फिरौन करते हैं, और ढोंगी विश्वासी संदेश की शारीरिक नकल करने वाले उसी बात की नकल करने की कोशिश करते हैं, यह जाने बिना कि यह कहां से आ रहा है, और इसे किसी संस्थागत के अंदर कुछ नीचे गिरा देते हैं, जबकि हवा कहां से आती है और कहां को जाती है नहीं जानते निश्चय ही, लेकिन नकल करने की कोशिश करते हैं और नकल करते हैं। लेकिन ध्यान दें, उसी चरवाहे की छड़ी ने दूसरे सर्पों को खा लिया था। वे सर्प कहाँ पर थे? वह धरती पर लाठी थे, और वहाँ पर केवल एक ही लाठी को उठाया गया। धरती और आकाश दोनों टल जाएंगे, यीशु ने कहा, लेकिन मेरा वचन टलेगा नहीं, उस पाप के लिए आने वाले सच्चे प्रायश्चित को बताता है। इसराइल के भविष्य को भी प्रस्तावित किया गया, और जहाँ मैंने इसराइल पर बोला, अब भविष्य में वहाँ उन्हें एक नबी चरवाहे के द्वारा मृत्यु की गुलामी से छुटकारे को प्रस्तावित किया गया था। उन्हें एक नबी चरवाहे के द्वारा जो एक छड़ी के साथ था गुलामी से बाहर लाया गया था। देखा, ये एक नबी चरवाहे के द्वारा मृत्यु और अधोलोक से इसराइल के भविष्य के छुड़ाए जाने को बोल रहा था, जिस पर हम बोलेंगे। अब इस सब के लिए, जैसा हम सब जानते हैं, नबी चरवाहे के वचन को स्वीकार नहीं किया गया, सारे इसराइल ने इसे ग्रहण नहीं किया है। अब ध्यान देना, वे शिकायत कर रहे थे, ओ जब वो चिन्ह चमत्कारों को कर रहा था वो एक महान व्यक्ति था, लेकिन जब ये उनके संदेश में आता है वह अलग ही था। वे सारे बड़े चिन्ह आने वाले एक संदेश के साथ जाते थे, हम ये जानते हैं। जंगल में उन्होंने शिकायत की, जंगल में, और हजारों मर गए। स्पष्ट रूप से वहाँ पर उनमें से केवल दो ही नहीं थे जो कभी उनमें से होकर गए, जो 25 लाख में बचाए गए थे, 25 लाख में से दो। आप कहते हैं वो उनका क्या हुआ, वे अनंत काल के लिए चले गए, वे सबके सब चले गए। भाई ब्रैनम, यीशु ने ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा, हमारे पिताओं ने जंगल में मन्ना खाया और उन्होंने चट्टान में से पिया, और वो, यीशु ने कहा, और वे हर एक जन मर गए, अनंत काल के लिए अलग हो गए। देखो, हर एक जन, ध्यान दे, उन्होंने परमेश्वर के ठहराए हुए मार्ग के बारे में कुड़कुड़ाए, यही कारण था वे मर गए। अब ध्यान से सुनना, अंतिम कुछ ध्यान देने वाली बातों को चूकना मत। वे कुड़कुड़ाए, उन्हें किसी बात ने जंगल में मार दिया। वे परमेश्वर के ठहराए हुए मार्ग के बारे में कुड़कुड़ाए, उस एक मनुष्य के संदेश के द्वारा जो एक नबी था, एक अकेले मनुष्य का नेतृत्व करना। मुझे बताओ कि परमेश्वर ने अगुवाई करने के लिए एक कभी झुंड का इस्तेमाल किया हो, आप इसे बाइबल में नहीं पाएंगे। एक ही मनुष्य, उन्होंने वचन मूसा के पास आया, कोरा, हम सब जानते हैं, उसने खुद ही सबको इकट्ठा किया और परमेश्वर के ऐसा करने पर कुड़कुड़ाया, इस तरह की चीज करने के लिए कि एक मनुष्य को संदेश के साथ कैसे तैयार करता है। उसने कहा, हम सब पवित्र हैं, क्यों हमारे पास एक संस्था नहीं हो सकती है, और हमारे पास क्यों नहीं, इसकी तैयारी करो और यह करो और वो करो। परमेश्वर ने मूसा को बताया, अपने आप को उससे अलग करो। अब ये बहुत हुआ, और याद रखना, यहूदा अंतिम दिनों में उसी बात को बताता है, यह सही है, यह कोरा के विरोध करने से नाश हो गए थे। हम यह भी जानते हैं कोरा और उन बाकी के लोगों का क्या हुआ जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर सवाल किया और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता पर सवाल किया। उस एक मनुष्य के नेतृत्व करने पर उसमें से हर एक जन नाश हो गया था। अब हम ध्यान देंगे, परमेश्वर नबी चरवाहे में अपने भविष्य की योजना को, अगले आवाज के लिए चिन्ह को दिखा रहा है। अब देखना, हम इसे यहाँ पर देखते हैं। अब आइए इसे अगले चिन्ह में देखें। अब ध्यान दें, उसे उसके भाइयों के लिए भेजा गया था जो गुलामी में थे, जो कैद में थे, एक छुटकारे के संदेश के साथ, परमेश्वर के दिए गए चिन्ह के साथ, ताकि उसके दावों को साबित करे। इसराइल उसके संदेश के लिए गया, उन्होंने उसमें से हर एक जन ने इसे विश्वास किया, लेकिन संध्या के समय में वह उसके चिन्हों चमत्कारों के पीछे गए। लेकिन संध्या के समय जब वे उसने उसके संदेश को दिया, यह अलग ही था। वे सब जिन्होंने उस संदेश का विश्वास नहीं किया, वे मर गए। यह सही है। वो संदेश क्या था? वो संदेश आने वाले न्याय के लिए था। संध्या के समय पर परमेश्वर इसराइल के तंबू से होकर निकला, ताकि यह देखे कि लोगों ने उसके चरवाहे नबी के संदेश पर विश्वास किया है या नहीं, और वे सब जिन्होंने विश्वास नहीं किया नाश हो गए। अब ध्यान दें, हम इसे उस महान चरवाहे पर लाने जा रहे हैं, बस कुछ ही मिनटों में। देखा, उस महान नबी चरवाहे की सेवकाई पर ध्यान दें, उसके चिन्ह चमत्कार, हर एक कलीसिया खुल जाती है और उसे स्वीकार करेगी। वे चाहते हैं उनके बीमार चंगे हो जाएं। वे बड़ी चीजों को करना चाहते थे, उसकी लोकप्रियता बहुत ही थी। लेकिन जब संध्या का समय आया, उसके पानी को दाखरस बनाने के एक दिन के बाद उसने हजारों को रोटी खिलाया और चिन्ह चमत्कारों को किया। उसने नीचे बैठकर और उनसे बातें की और उसने उनसे कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। तुम ये क्यों कहते हो कि मैं पिता को दिखाओ? ओ भाई, यह मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के साथ बराबरी कर रहा है। यह उनके गिरजा संबंधी विचारों के लिए बहुत ही ज्यादा था, लेकिन यह सच्चाई थी। वो था, समझे? लेकिन जब उन्होंने इसे किया, बहुत से लोगों ने उसका अनुकरण नहीं किया। तब वह पीछे मुड़ा और कहा, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाओ और उसका लहू न पियो, तुम्हारे पास तुम में कोई जीवन नहीं है। अब आप क्या सोचते हो, एक चतुर बुद्धिमान व्यक्ति? क्या मैं कल्पना करता हूँ, वे याजक उनके मंदिर के पास में, उसका वहाँ पर होना उनके लिए लज्जित कर देता है। यह सोचकर कि एक मनुष्य वहाँ पर खड़ा होगा और इस तरह की बात को बोलेगा कि जब तक तुम लोग मेरे मांस को न खाओ और मेरे लहू को न पियो, कहा यह व्यक्ति एक पिशाच है, मेरे मांस को खाओ और लहू को पियो, क्यों? वो एक नरभक्षी है। तुम जो अच्छे विचार के लोग हो, तुम्हें इस तरह के पागल मनुष्य से दूर रहना होगा। उसने इसे कभी भी नहीं समझाया, उसने केवल इसे कह दिया। उसने इसे उनके रुकावट के लिए कहा, ताकि उसकी भेड़ को बकरी से अलग करे। उसने इसे किया ताकि उन्हें बाहर करे, और कोई भी उसके साथ सहयोग को नहीं चाहता था। उसके बाद से उनका कोई भी सहयोग न था। देखा, ध्यान दे, संध्या के समय पर परमेश्वर उन तंबुओं में से होकर गुजरा और देखा कि कितने लोगों ने विश्वास किया था, और उसने उसी बात को उस महान चरवाहे के दिनों में किया था। उस महान चरवाहे नबी की सेवकाई को ध्यान दें, लेकिन इस पर ध्यान दें जो उसके संदेश के विश्वासी थे, लेकिन इस संध्या के संदेश पर वे इसे विश्वास नहीं करेंगे। वे विश्वास नहीं करेंगे कि वह परमेश्वर था। वे उसे एक भला मनुष्य बनाना चाहते थे, वे उसे एक नबी बनाना चाहते थे। वह एक भला मनुष्य था और वह एक नबी था, लेकिन वह उससे भी बढ़कर था। यही आज की आम शिक्षा है कि वह केवल एक भला मनुष्य है, वह एक नबी है, वो इमानुएल से कम नहीं था। वो परमेश्वर था जो उसके पुत्र यीशु मसीह में प्रमाणित हुआ था, जो उसे और पिता को एक बना रहा था। यही वो सब है जो वो हो सकता है। जकरिया 14:7 में मैं हो सकता है इसे कहूँ, संध्या के उजालों और अंतिम समय पर फिर से संदेश के लिए बोलूँ। क्या आपने यह ध्यान दिया? जितने लोगों ने मूसा का अनुकरण किया और अग्नि के स्तंभ को देखा, जिसने उसकी सीनै पर्वत पर पहचान दी थी, उसने इसकी साक्षी दी थी और एक झाड़ियों में इस अग्नि के स्तंभ के लिए बताया था और उसे संदेश को बताया था। उसमें से बहुतों ने इसका विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन जितनों ने मिस्र से बाहर उसका अनुकरण किया, संसार से बाहर निकलना और दो भाग हुए समुद्र को पार करना और जंगल के अंदर चले जाना, उसी अग्नि के स्तंभ को देखा जिसे उसने बताया था, प्रमाणित कर रहा था जो भेड़ों का चरवाहा होना था। उन्होंने इसे देखा और बहुतों ने इसे देखने के बाद इसका फिर भी विश्वास नहीं किया। ध्यान ने कैसे फिर से कभी न बदलने वाला परमेश्वर, वो महान चरवाहा नबी, उन्हें लेता है जो उसके साथ और उसकी सेवकाई के साथ बने रहे थे, उस जैतून के पर्वत पर ले जाता है। वो महान चरवाहा नबी यीशु, वो एक जिस पर हम बोल रहे हैं, और पिता को बोलते सुना वही अग्नि का स्तंभ जो उसे प्रमाणित करता है, जिसने मूसा को प्रमाणित किया। वही परमेश्वर जिसका मूसा ने जिक्र किया, मूसा पर आया और अग्नि के स्तंभ के द्वारा साबित किया कि वह यहोवा था जो मूसा की अगुवाई कर रहा था। परमेश्वर उसके चरवाई नबी में था। यहाँ पर वो दूसरे नबी चरवाई को लेता है, वो महान नबी, वो सच्चा भेड़ यीशु, और तीन चुनकर मनुष्य को लेता है और उन्हें जैतून पर्वत के सबसे ऊपर ले जाता है और वहाँ पर यीशु प्रमाणित हुआ था। और यहाँ तक सारे दूसरे लोगों से स्वयं पूर्ण रूपांतरण हुआ, कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। और जब उन्होंने ऊपर देखा वहाँ कोई मनुष्य नहीं था केवल यीशु को छोड़। यह सही है, वही वो एक था। अब यह इसे खत्म करता है जहाँ तक मैं समझता हूँ, समझे। चेहरा मूसा सीने पर्वत पर उस तेजोमय की उपस्थिति में था। इसने उसके चेहरे को बदल दिया। जब वो नीचे आया उसे अपने चेहरे के ऊपर पर्दा करना था। वो चरवा नबी मूसा जिसमें यहोवा एक भाग में था, कुछ एक भाग में उसके चेहरे पर, उसके पास उसके मुंह में वचन था। लेकिन ध्यान देना, जब वो महान चरवा तेजोमय की उपस्थिति में था, इसने क्या किया? उसमें उसके संपूर्ण चेहरे की आकृति को बदल दिया। वो परमेश्वर का कुछ भाग नहीं था, वो पूर्ण परमेश्वर था, वह इमैनुएल था। इन चरवाओं को ही क्यों होना था? ध्यान देना, देखो अब परमेश्वर सर्वसामर्थी अपने आप को दर्शा रहा है, मतलब मूसा उस चरवाए नबी में। ध्यान देना कैसे परमेश्वर अपने आप में जाना गया, यह मेरी आखिरी मुख्य बात है। उसे देखना, वो अग्नि के स्तंभ की उपस्थिति में अभिषेकित खड़ा हुआ था, कोई भी पहाड़ पर नहीं था, केवल मूसा को और यहोवा को छोड़। आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। ध्यान दें, अपने हाथ को अपनी छाती पर रखो, लेकिन इस दूसरे चिन्ह को देखना जो अब एक आवाज के साथ है। अपने हाथ को अपनी छाती में रखो। हमारे पास कोई कारण नहीं है ये विश्वास करने के लिए कि मूसा बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने जरूर उसके दाएं हाथ को छाती पर रखा होगा, क्योंकि अधिकतर लोग दाएं हाथ के होते हैं। उसने उसके दाएं हाथ को छाती पर रखा। अब ध्यान देना, क्या ही एक तस्वीर है हम यहाँ पर देखते हैं। यहोवा मूसा में है जो चरवा नबी है। मूसा परमेश्वर को प्रतिनिधित्व कर रहा था क्योंकि परमेश्वर मूसा में था। उसे ध्यान दे, उसने उसके अपने हाथ को छाती पर रखो, क्या ही चिन्ह है। अब वहाँ पर वो खड़ा होता है, अपने दाएं हाथ को उसके हृदय पर रखे हुए इस तरह से खड़ा हुआ है, जहाँ पर उसने छुटकारे के रहस्य को जगत की नींव डालने से पहले छिपाए हुए था। यहीं पर क्यों चरवाए हैं? यीशु परमेश्वर का दाहिना हाथ था, हम सब जानते हैं। वहाँ पर मूसा बिल्कुल वैसे ही उसे दर्शा रहा है, वो पिता के रहस्यों को पकड़े हुए था और उन्हें हमारे लिए दिखाया। ध्यान दें, उसे देखें, उसने अपने प्रहार किए हुए दाहिने हाथ को बाहर निकाला जो एक घातक कोड़ के साथ था, जो दिखाता है कि परमेश्वर उसके दाहिने हाथ से क्या करेगा। ध्यान दें, उस कोड़ का कोई इलाज नहीं है। फिर से ध्यान दें, ये कोई ऐसे ही साधारण सा कोड़ नहीं था, यह उसके अंतिम पड़ाव में था। हिम के जैसा सफेद उसके हाथ को एक खतरनाक चीज से प्रहार किया गया था। मूसा को उस वक्त कैसा लगा होगा जब उसने अपने दाहिने हाथ को हृदय पर से निकाला होगा और उसका हाथ कोर से घात किया हुआ था। कोर पाप को दर्शाता है जो लाइलाज है, और विशेषकर इसके अंतिम समय में। और भाइयों, यही है जहाँ पर संसार था जब परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ को अपने छाती में से निकाला। संसार पर उस घातक कोड़ के साथ प्रहार हुआ था और इसका कोई भी इलाज था ही नहीं। वैसे ही यह आज रात है, क्योंकि वे इसके उपचार को स्वीकार नहीं करेंगे। उस उपचार को कलवरी पर दिया गया था, लेकिन लोग पाप के लिए परमेश्वर के बताए हुए आदेश के बजाय कुछ मनुष्य के बनाए हुए आदेशों को लेना चाहते हैं। ध्यान दें, यह कभी भी धीरे धीरे नहीं आता है जैसे कोड़ तेजी से आता है, लेकिन यकायक आ जाता है। जब उसने अपने हाथ को बाहर निकाला, ये घात किया हुआ था, ये पूरी तरह से कोड हो गया था। ध्यान देना, परमेश्वर ने क्या कहा, अब तुम पाप के अंदर धीरे धीरे नहीं जाते हो, लेकिन जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। और यह सही है, जिस दिन तुम इसे खाते हो। ध्यान दें, ये नबी चरवा था जिसने खुद पर प्रहार किया, परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा उसे लिया और उसने अपने हाथ को अपनी छाती पर रखा और इसे बाहर निकाला जो कोड़ के साथ घात प्रहार किया हुआ था। वो चरवा नबी इसे अपने आप में किया और वह महान नबी चरवाहा यीशु इसे अपने आप में किया। मैं अपने जीवन को लेता हूँ, इसे कोई मनुष्य मुझसे नहीं लेता है। वो महान नबी चरवाहा था, वो महान नबी चरवाहा कोई मनुष्य मुझसे नहीं लेता है, इसे मैं स्वयं से करता हूँ। ये धीरे धीरे नहीं आता है, ये एक मिनट में आता है। उस महान चरवाहे ने स्वयं हमारे दोषों को ले लिया और खुद को घात किया, हमारे पापों को लिया और इसे अपने आप पर डाल दिया। कोई अचम्भा नहीं। कवि ने कहा, मध्य में व्याख्या करती हुई चट्टान और काला होता आकाश, मेरे उद्धारकर्ता ने अपने सिर को झुकाया और मर गया और उस खुलते हुए पर्दे ने राह को प्रकट किया, स्वर्गीय आनंद और अनंत दिन का। यह रहस्य परमेश्वर के हृदय पर उन सारे वर्षों में था जिसे उसके दाहिने हाथ यीशु मसीह के द्वारा ढापा गया। उस महान चरवाहे ने स्वयं हमारे दोषों को हमारे लिए ले लिया था। यशाया 53:6 ने कहा, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। परमेश्वर की चंगाई का रहस्य यीशु मसीह के या परमेश्वर के हृदय में रखा हुआ था। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर था। वही केवल वो भेद है जिसके हृदय में रहस्य था। यही वो कारण है इसके आने वाली पूर्व छाया को हमेशा ही एक भेड़ होना था। पहला वो एक भेड़ था और अंतिम वो एक भेड़ था। यही वो कारण है इसे एक चरवाहे के लिए आना था ताकि यह जाने कि कैसे उसकी भेड़ का ध्यान रखना है। आपने इसे समझा? ध्यान दें, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। ध्यान देना, यह तुरंत आया और तुरंत से चला गया, ना ही एकदम से। वह दाहिना हाथ दूसरी बार छाती में से निकाला गया था। वह प्राण घातक बीमारी चली गई थी जब उसने इसे दूसरी बार बाहर निकाला। और जब वो महान चरवाहा, वो भेड़ का चरवाहा, जब उसने कहा उस क्रूस पर, जब उसने हम सबके लिए पाप के दाम को चुका दिया, उसने कहा यह समाप्त हुआ, पाप खत्म हुआ, वह जुर्माना भर दिया गया था, कर्जा चुकाया गया था। इसने एक वर्ष को नहीं लिया और अतः इसके अंदर आ गया जो कुछ सुधारकों के दिनों में या ऐसे ही कुछ, यह ठीक तभी खत्म हो गया था। पाप एक क्षण में आ गया परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करने के द्वारा, एक वचन को तोड़ने के द्वारा। आज रात मेरे भाइयों, आपका प्राण नरक के ऊपर एक जंजीर पर है और वह जंजीर कोई धर्मशास्त्री की धर्म शिक्षा की शिक्षा नहीं है। वह जंजीर कोई संस्था नहीं है या कोई संप्रदाय जिसके द्वारा आप जी रहे हैं। वह जंजीर परमेश्वर का वचन है। यीशु ने मनुष्य जाति को उसका वचन दिया ताकि मनुष्य उसके द्वारा जिए, और हवा ने केवल वचन की एक छोटी सी कड़ी उसे तोड़ दिया। कोई भी जंजीर अपने सबसे कमजोर कड़ी में ज्यादा मजबूत होती है। जब आप एक वचन को बाहर निकालते हैं जो वो उस किताब का पहला है, यीशु किताब के मध्य में आया और कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। यह किताब का वह मध्य था। किताब के अंत पर उसने कहा, जो कोई भी एक वचन को निकालेगा, एक वचन का गलत अनुवाद, एक वचन को वहाँ से निकालेगा, मैं उसका भाग जीवन की किताब से निकाल दूंगा। आप नरक के ऊपर से निकल रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर लटक रहे हैं। आप किसी को भी आपके अंदर कुछ भी बात ठूसने न दे, यह वो यहोवा यो कहता नहीं है। ओह, मैं देखता हूँ तो वे कहते हैं, निश्चय ही हमने सब कर दिया है, हमने सब कर दिया है। यही है जो हो सकता है महायाजक और उन लोगों ने उस महान चरवाहे के दिनों में सोचा होगा। यही है जो हवा ने सोचा, यही है जो शैतान ने उससे कहा, निश्चय परमेश्वर नहीं करेगा, लेकिन उसने किया क्योंकि उसने कहा कि वो करेगा, और यही वो कारण है आज वो इसे फिर से करेगा। कोई आश्चर्य नहीं जब उसने कहा, जैसे ये नूह के दिनों में हुआ था जहाँ पर 8 लोग उस पानी के द्वारा बचाए गए थे, वैसे ही यह मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। देखो बहुत ही थोड़े, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को ले जाता है, और बहुत ही थोड़े होंगे जो इसे पाएंगे। यह सही है क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुँचाता है, बहुत से वहाँ इसमें चले जाएंगे। जब वो महान चरवाहा घात किया गया, वो महान भेड़ नबी, जब वहाँ पहले उसे घात किया गया था, उसने कहा यह समाप्त हुआ, और यह और उसी मिनट पर जैसे ही इस चरवाहे को घात किया गया, यह खत्म हो गया था। पाप समाप्त हुआ, अब कोई पाप नहीं रहा, वे साफ हो गए थे, जुर्माने को भरा गया था। वे विश्वासी जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे थे, जगत के निर्डालने से लेकर पहले से ठहराए गए थे, उसी मिनट पर यह समाप्त हुआ था कि यीशु ने कहा यह समाप्त हुआ है। वो जो महान चरवाहा था उसकी भेड़ों के लिए आया था, यह समाप्त हुआ था, परमेश्वर का दाहिना हाथ उसके हृदय में से बाहर निकला जो घात हुआ। फिर ईस्टर के दिन उसने हाथ को वापस डाला, आमीन, उसे उसके हृदय में वापस खड़ा किया और इसे आपके और मेरे लिए आगे बढ़ा दिया उसके वचन के रूप में, ताकि हमें वापस उस मूल बगीचे की ओर छुड़ाए जहां पाप ने हमें गिरा दिया था। वो छिपा रहस्य जो उसके हृदय में था एक नबी चरवाहे के द्वारा प्रकट हुआ। ये एक चरवाहे के द्वारा प्रकट हुआ, नबी चरवाहे के द्वारा। कोई आश्चर्य नहीं पहाड़ उछलने लगे और उस दिन पर चिल्लाए, कोई आश्चर्य नहीं सूर्य ने उसके चेहरे को छिपा लिया और आनंद के लिए चिल्लाया, कोई आश्चर्य नहीं सारी प्रकृति ने मुक्ति को पा लिया, हवा ने पेड़ों को हिला दिया जब तक वे हिले नहीं और आनंद मनाया और उछलने लगे। उन्होंने नबी चरवाहे को उस पर्वत पर देख लिया था जो जीवन की किताब में से हर एक नाम को छुड़ाता है, और उन्होंने देखा कि उनकी खुद की प्रकृति छुड़ाई गई थी। वे चिल्लाए और उछलने लगे और संसार एक भूकंप के अंदर चला गया और पहाड़ तड़क गए, चट्टाने गिरने लगी और सूर्य नीचे चला गया और हर एक बात ने स्थान को ले लिया। जैसे कोई भी सभा हो, जब वो चरवाहा आपको प्रकट करता है कि यह समाप्त हुआ है, वहाँ मैंने उछलते हुए अवधि को देखा है और आनंद की अवधि को देखा है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा। पहाड़ हिल गए और वो सूरज नीचे चला गया और हर एक बात ने जगह ले ली थी, लेकिन वहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा। और मैंने सभाओं को देखा है जहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ ने लोगों को प्रकट किया है कि वे संसार से और संसार की बातों से आजाद हुए थे और आनंद प्रभु के आनंद ने सभा को भर दिया। वे खड़े होकर और चिल्लाए और रोए और अपनी जोर सी आवाज से परमेश्वर की महिमा के लिए चिल्लाने लगे। मैंने कभी कुछ भी नियम के विरुद्ध नहीं देखा, वे हमेशा ही नियम में रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये पहचान लिया था कि उनके नाम जो मेमने की जीवन की किताब में जगत के निर्णय से पहले लिखे गए थे। उस महान नबी चरवाहे ने उनके पास संदेश को लाया था और वे छुड़ाए गए थे, वो नबी चरवाहा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई और गिरजा से संबंधित क्षेत्र इसके लिए क्या कहते हैं, वे जानते हैं उसके साथ क्या हुआ है, उस चरवाहे ने वहाँ पीछे क्या किया, वह जानते थे क्या बात ने जगह ली थी। किसी मनुष्य के पास अधिकार नहीं है कि उस पवित्र मेज पर प्रवेश करके वचन को प्रचार करे जब तक वो वैसा नहीं करता जैसा मूसा ने किया। उसने खुद परमेश्वर से उस भूमि पर मुलाकात की जहाँ पर कोई भी धर्मशास्त्री इसे समझा नहीं सकता है। मूसा वहाँ पर था, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे इसराइल के संदेशवाहक ने कहा, ओह यह एक मूर्खता है, आपने कभी कल्पना की है, आपने इसे देखा है, यह एक मूर्खता है, आप नहीं ले सकते हैं, आप उससे नहीं निकाल सकते हैं। वो जानता है मूसा वहाँ था, वही वो एक था इसके लिए हुआ था। एक मनुष्य की एक धर्मशास्त्री की उपाधि के द्वारा या किसी विद्वान के द्वारा कोई अधिकार नहीं कि उस पर जाकर यीशु मसीह के संदेश को जाहिर करे जब तक वो पहले अग्नि के स्तंभ में परमेश्वर के आमने सामने नहीं मिल लेता है। उसके पास अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को संदेशवाहक बुलाए, क्योंकि संसार के सारे धर्मशास्त्री व्याख्या नहीं कर सकते हैं जिससे कि आपको दूर लेकर जाए। ऐसा आपके साथ हुआ है, आप वहाँ पर थे, आप इसके बारे में जानते हैं। सावधान रहें, कोई और क्या कहता है या वे कितना भी कहें, वे दिन बीत गए हैं, ये ऐसा नहीं है, आप ये आपके साथ हुआ है और ये वचन के अनुसार है। हाँ, यही वो कारण है मूसा जानता था कि उस आवाज ने उससे बातें की थी जो एक वचन की आवाज थी। वो जानता था कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया था तेरा बीज परदेसी होगा कुछ 400 वर्ष तक के, लेकिन मैं उन्हें छुटकारा दूंगा। और वो जानता था 400 वर्ष बीत चुके हैं और उसे इसे करने के लिए बुलाया गया था। पुरुष और स्त्री, परमेश्वर ने इस अंतिम दिनों में प्रतिज्ञा की है कि वो उसकी आत्मा को हर एक देह में उंडेलेगा। उसने प्रतिज्ञा की है वो पवित्र आत्मा को भेजेगा और वो एक बिना दाग और झुर्री की दुल्हन को बुलाएगा। उसने इसकी करने की प्रतिज्ञा की है, वो इसे करेगा। इन किराए के चरवाहों को मत सुनना, वो आपको गुमराह करेंगे। पवित्र आत्मा वो चरवाह है जो तुम भेड़ों को इस वचन के भोजन में से खिलाएगा। ये हमेशा ही चरवाहे के द्वारा आता है, वो हमारा चरवाह है, उसकी सुनो। आप उसके बाड़े की भेड़ हो, यदि आप हैं तो आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं, ना ही कोई और क्या कहता है, आप सुनते हो जो वो कहता है, एक अजनबी की आवाज़, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ओह प्रभु, सामर्थी चरवाहे नबी को फिर से सुनो, उनके लिए अनुवाद करते हुए और परिचय कराते हुए। यूहन्ना जब वो यर्दन नदी पर खड़ा था, देखो उसने क्या कहा, वह खड़े होकर प्रचार कर रहा था, उसने कहा वो घड़ी आ रही है। ध्यान दें, यूहन्ना एक याजक का पुत्र था, उन्होंने हमेशा ही उनके पिता के उस कार्य को किया। इसी तरह से हमें हमारे नाम मिलते हैं, जो भी उन्होंने किया, वे उन्हें वो बुलाते हैं, और यूहन्ना को उसके पिता के जैसा एक याजक बनना चाहिए था। और आप जानते हैं जब उसकी माँ गर्भवती थी, प्रभु का दूत उसके पिता जकरिया से मिलने के बाद और एलीशेबा के घर गया, और वो पहले से ही 6 महीने गर्भ से थी और वह माँ बनने वाली थी। लेकिन उस बालक में अब तक जीवन नहीं था, वह डरी हुई थी क्योंकि बालक में कोई हलचल नहीं थी, यह असामान्य था। और पवित्र आत्मा वो प्रभु का दूत मरियम के सामने उपस्थित हुआ और उससे कहा कि उसे एक बालक होने जा रहा है बिना किसी पुरुष को जाने, और उसे एलीशेबा की परिस्थिति के बारे में बताया। वहाँ ऊपर यहूदिया की पहाड़ी में एलीशेबा को बताने के लिए गई, और जब वह एलीशेबा से मिली उसने उससे कहा वो एक माँ बनने जा रही है, और वह इसे समझ नहीं पाई किसी पुरुष को जाने बिना। लेकिन उसने कहा पवित्र आत्मा मुझ पर छाया किए हुए था और कहा यह पवित्र बात जो मुझ में जन्म लेगी, जिसे परमेश्वर का पुत्र बुलाया जाएगा, और मैं उसका नाम यीशु बुलाऊंगी। और पहली बार वो नाम यीशु मनुष्य जाति के होठों से कभी लिया गया। एक छोटा मरा हुआ बालक अपनी माँ के गर्भ में आनंद से छलांग लगाई और चिल्ला उठा और माँ की गर्भ में कूदने लगा, और उसने अब तक कभी भी जीवन को नहीं पाया था। यीशु मसीह वो बोला गया नाम एक मरे हुए बालक के अंदर जीवन को लाता है। एक कलीसिया में इससे क्या करना चाहिए जो फिर से जन्म लेने का दावा करती है, और हम रूखेपन के जैसे ऐसे ही बैठे रहते हैं और इस तरह की चीजों को होने देते हैं, और उठकर आपके दोषों को बताने से डरते हैं और इन सारी बेहुदा बातों को दोष लगाते हैं। यीशु मसीह को कल, आज और युगानुयुग एक बनाते हैं। यह क्रिसमस का समय है, इन सांता क्लॉज और उन क्रियाकलापों से बाहर निकलो, उन व्यवसायिक होती बेहुदा बातों से दूर हो जाओ। आपने कभी बाइबल में सांता क्लॉज के बारे में सुना है? ये एक रोमन मनगढ़ंत कथा है, इसका कोई भी संबंध नहीं है, वहाँ इस तरह की कोई चीज नहीं है। इस तरह की शिक्षा अपने बच्चों को मत दे। जब एक दिन आप अपने बच्चों को कहते हैं ये गलत कहानी थी, तब आपने अपने बच्चों को झूठ बताया है, और यह यीशु मसीह के बारे में गवाही को नुकसान पहुँचाएगा। वो कहेगा हो सकता है ये भी वैसे ही गलत हो, लेकिन यीशु मसीह उस महान नबी चरवाहे को वापस क्रिसमस के अंदर रखे जहाँ से यह ताल्लुक रखता है। ध्यान दें, इस महान नबी को सुने, यूहन्ना जब वहाँ पर खड़ा होता है, हम सब जानते हैं वो एक महान चरवाहा नबी था। अब उसके पास एक संदेश था, वो दूत जानता था कि वो यीशु का परिचय करवाने जा रहा है। अब वो किसी धर्म शिक्षा विद्यालय में नहीं गया, उन्होंने कहा होगा क्या तुम जानते हो वो फलाना फलाना विद्वान, वही मनुष्य अब उस स्थान को लेना है, तुम्हें उसे परिचय कराना है, और तुम जानते हो कि देखो ये किसी मनुष्य के साथ इसका मिश्रण नहीं कर सकता है। 9 वर्ष की उम्र में हमें बताया गया कि वो जंगल के अंदर चला गया था ताकि परमेश्वर के सामने तैयार हो जाए, यही है जहाँ से चरवाहों को आना है। ध्यान दें, उसका संदेश एक धर्म शिक्षा के जैसा नहीं था, किसी महान किसी उपाधि के बड़े फूले हुए शब्दों के साथ। उसने कहा ओ तुम जो सर्प के वंश हो, उन धर्मी मनुष्यों से कह रहा है, तुम सर्प के वंश हो, यही है जो उसने जंगल में देखा था। उसने सर्प को देखा था, सबसे निचली चीज जो वो देख सकता था वो सर्प था, और उसने उस दिन के याजकों धर्मशास्त्रियों धर्मज्ञानियों को कहकर बुलाया एक सर्प का झुंड, कहा तुम्हें आने वाले क्रोध से किसने चेतावनी दी है, यह कहना आरंभ मत करना हम इससे ताल्लुक रखते हैं, हम उससे ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम की संतान को खड़ा करने के लिए सक्षम है, उन पत्थरों को जो उसने जंगल में देखा था। और ये भी कहा कि वह कुलाड़ी पेड़ के जड़ पर रखी हुई है, यही है जो वो उन जंगलों में देखते आ रहा था, सर्प पेड़, और देखो यह उसका संदेश था। वह बड़े बड़े फूले हुए ऊंचे शब्दों को नहीं जानता था जो किसी धर्म विज्ञान के विद्वान जानते हैं इसकी व्याख्या को कर सके, उसने बस बिल्कुल वही प्रचार किया जो प्रकृति के क्रम में था। यही है जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, उस चरवाहे की छड़ी को, वो चरवाहा, वो भेड़ जो प्रकृति के क्रम में है। उसने क्या किया, उसके पास करने के लिए एक बड़ा काम था, वही एक था जो मसीहा को जान लेगा। उसने कहा मैं कहता हूँ वो आपके बीच में अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है, और तुम उसे नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हारी धर्म शिक्षा ने तुम्हें इतना बांध के रखा है, तुम नहीं जानते हो कि तुम कहाँ पर हो। एक दिन यीशु चलकर आता है, यूहन्ना ने कहा देखो वहाँ पर परमेश्वर का मेमना चलकर आ रहा है जो सारे पापों को ले लेगा, वो मेमना हालेलुया, वो सच्ची प्रायश्चितता। वहाँ वो आता है, हर एक भेड़ जो अदन के बगीचे से छाया किए हुए थी, एक साधारण सा व्यक्ति उस नदी में चलकर आता है। उन्होंने कहा यूहन्ना इसे कैसे जानते हो, मैंने कुछ विभिन्न चीज को नहीं देखा, लेकिन मैं गवाही देता हूँ मैंने परमेश्वर की आत्मा को एक पिंडुक की नाई उतरते देखा है, और एक आवाज कह रही थी यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं रहने से प्रसन्न हूँ। उस पिंड और मेमने को देखो, देखा क्या हो यदि वहाँ पर एक क्या हो यदि वहाँ पर कुछ और होता था, क्या हो यदि एक भेड़िया वहाँ पर खड़ा होता था, तो वो मेमना उस पर नहीं आता, या वो पिंडुक। परमेश्वर ने खुद को एक पिंडुक के साथ प्रतीक किया जो आकाश में सबसे नम्र पक्षियों में से एक है, उसके बेटे को एक भेड़ के द्वारा प्रतीक किया जो धरती पर जानवरों में सबसे नम्र है। आकाश में के शुद्ध पक्षी को देखो, एक कौवा नहीं, एक गिद्ध नहीं, लेकिन एक पिंडुक, एक सुअर नहीं लेकिन एक मेमना, और कोई प्रकृति इसके साथ मिश्रित नहीं हो सकती है। और ध्यान दें, जब वो पिंडुक उस मेमने पर आया, इसने उसकी अगुवाई की, ना ही उस तरह से जो वो करेगा, लेकिन जिस तरह से पिता उसकी अगुवाई करेगा, इसी तरह से आज वो सच्चा मेमना होता है। ओ क्रिसमस समय की भेड़ो, क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर केवल उसके वचन के द्वारा अगुवाई करता है, यह उसकी छड़ी है। और ध्यान दें, कोई भी इसका स्थान नहीं लेगा, लेकिन योना ने कहा, बाकी के लोगों ने इसे नहीं देखा, लेकिन मैं इसकी गवाही देता हूँ, मैंने इसे देखा परिचय कराते हुए, देखो वो परमेश्वर का मेमना आता है जो संसार के पापों को ले लेता है। हो सकता है मैं अब मेरे क्रिसमस के संदेश का परिचय करवाऊं, और जब मैं बंद कर रहा हूँ, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, यह वही मेमना है, वो बिल्कुल वैसे ही आज मेमना है जैसे वो तब था, वो बिल्कुल ऐसा ही आज यहाँ पर है जैसे वो वहाँ पर था, क्योंकि उसका वचन एक सा है। जहाँ कहीं भी दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ, बिल्कुल यही है जो उसने कहा। वह कभी नहीं बदलता है, वह परमेश्वर है, वह वचन है, वो कभी नहीं बदलता है। अब भी अपनी भेड़ों को दे रहा है, उसके चरवाहे नबी के द्वारा भोजन खिला रहा है, उसकी भेड़ का पहला खाना न ही धर्मशास्त्री के लिए उसकी भेड़ों के लिए है। वे नहीं लेंगे, कैसे वे दूसरे से खा सकते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान इसे ध्यान दे, लेकिन बुद्धिमान और ज्ञानी संसार के अच्छे प्रशिक्षित लोग अब भी इच्छा रखते हैं यह कहने की कि एक सांता क्लॉज है, और वहाँ पर काल्पनिक कहानी है और विभिन्न चीजें हैं जिसकी वे आराधना करते हैं, क्योंकि वे उसे स्वीकार नहीं करते जो वचन है, क्योंकि वे वचन को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी संस्थाओं में या उनके स्वाद में ठीक नहीं बैठता है जो वे उस दिन के किराए के चरवाहे हैं। संप्रदाय के द्वारा इन्हें किराए पर लिया जाता है जो आपको एक बकरी के नीचे एकता में लाएंगे। क्या आप इसे विश्वास नहीं करते? वे आपको वध स्थान की ओर अगुवाई करेंगे। इस महान चरवाहे को सुनना जो 1900 वर्ष पहले जन्मा था, इस महीने कहीं तो बार उस ओर उसके संदेश में वे सच्चे चरवाहों के पास आता है जो जानते हैं कैसे भेड़ों की देखभाल करना है। ध्यान देते हुए वह अब भी इसे चाहते हैं, वे इसे आज स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने तब किया था, क्योंकि यह उनके गिरजे संबंधी स्वाद में ठीक से नहीं बैठता है। वे वचन को घुमाते हैं और इसे उनकी संस्थाओं के साथ सही बैठाते हैं, और वचन को प्रचार नहीं करते, वे नहीं करते हैं। वे कहते हैं ठीक है, ये प्रेरितों के दिनों के लिए था, इसका यह मतलब नहीं होता है, इसका मतलब बिल्कुल यही होता है जो ये कहता है, इसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है कि उनके लिए इसे अनुवाद करे। अब आइए इस घड़ी के लिए हमारे सिरों और हृदय को इस धरती की मिट्टी की ओर झुकाएंगे, और चलो शीघ्रता से एक सच्चे चरनी की ओर जाएं, देखने के लिए और उस उजाले को ग्रहण करने के लिए जो चरवाहे के द्वारा इस वचन को लाता है, वो महान नबी चरवाहा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। मैंने आपको विस्तार में बताया है, हो सकता है मैं अपने शब्दों को इस तरह से नहीं रख पाया हूँ जैसे एक धर्मशास्त्री को रखना चाहिए, मैं इसे करने की कोशिश नहीं करता, मैं वैसे ही करने की कोशिश करता हूँ जैसे वो मुझे देता है। लेकिन क्या आपने देखा यह चरवाहे ही क्यों होने थे? वे जो दूसरे थे, वे विभिन्न विचारों के साथ प्रशिक्षित थे, इतना तक कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और आज हमारे पास बहुत सारे विभिन्न निरीक्षक, जिलाधिकारी, बिशप, याजक, कार्डिनल, पोप, वे सब कुछ जो संसार में है ताकि हमारी अगुवाई करने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर हमें एक चरवाहे को देता है और वह चरवाहा पवित्र आत्मा है। अब मुझे ध्यान से सुनना, जब वो ना ही एक विचार, वो एक व्यक्तिगत स्वर्ण नाम है, जब वो पवित्र आत्मा आता है, वो सच्चाई का आत्मा, वो आपको इन बातों को प्रकट करेगा जिसे मैंने आपको बताया है, और आपको आने वाली बातों को दिखाएगा। यही वो महान चरवाहा है, यही जो महान चरवाहा यीशु छोड़ गया है, और पवित्र आत्मा ने बाइबल को लिखा। बाइबल ऐसा कहता है, पहले के मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा चले, वचन को लिखा। अब क्या पवित्र आत्मा आपको एक संप्रदाय की ओर खींच सकता है? क्या ये आपको किसी चीज के लिए खींच सकता है जिसे वचन नहीं कहता है? क्यों? यह पूरी तरह से असंभव होगा। पवित्र आत्मा झूठा होगा यदि उसने यह कहा यही है जो तुम्हें करना चाहिए, और फिर वापस मुड़कर और कहता है नहीं, यह गलती थी, तुम्हें वो करना है जो तुम्हें कलीसिया करने को कहती है। अब यदि आप कुछ तो सुनते आ रहे होंगे, कोई और आपको सच्चाई से दूर करता है, उस सच्चे चरवाहे से दूर करता है जो आपको वचन की ओर अगुवाई करेगा, वो पवित्र आत्मा, और आपके पास अनुभव नहीं होता है और आपके जीवन में पवित्र आत्मा की कोई गवाही नहीं होती है, जो बिना परमेश्वर वो एक है, परमेश्वर ही केवल एक है जिसके पास अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन है, और किसी भी चीज की शुरुआत है उसका एक अंत है। और यदि आप केवल एक कलीसिया के सदस्य हैं तो इसकी एक शुरुआत थी, लेकिन परमेश्वर के वचन की ना कोई शुरुआत है और परमेश्वर के वचन की, और जब आपका परमेश्वर से जन्म होता है, आपका वचन से जन्म होता है, तब आप एक परमेश्वर के पुत्र बनते हैं, और आपका नाम मेमने की जीवन की किताब में जगत के नींव डालने से पहले डाला गया है, और आप आपके बालों का जो रंग है, आपकी आंखों का जो रंग है, जिस ढांचे में आप हैं, परमेश्वर ने आपको जगत की नींव डालने से पहले देख लिया था और आपको एक मनुष्य जाति में देखा था जैसे आप हैं। और हालांकि वहाँ पर अब भी कुछ लाखों वर्ष आने थे, वहाँ कोई भी आपको वापस उस सिद्ध डील डॉल में आने से नहीं रोक सकता है जिसे आदि में परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, एक अजनबी के पीछे नहीं जाएगी। और यदि आपने आज रात उस जीवन को अस्वीकार नहीं किया है और आप एक काल्पनिक कहानी की ओर देख रहे हैं, उस एक चरनी में पड़े हुए छोटे बच्चे की ओर, और एक ज्ञानी मनुष्य का झुंड उसके चारों ओर है, आप इस तरह की बातों का विश्वास नहीं करते हैं और यह सोचने की कोशिश करते हैं ठीक है, मैं भला व्यक्ति बन जाऊंगा, मैं यह करूंगा और मैं कलीसिया से जुड़ जाऊंगा, और यही है जो सबकी मुझे करने की आवश्यकता है। आप खो गए हैं। यदि आपके पास अनंत जीवन नहीं है तो भला आप हमेशा के लिए कैसे जी सकते हैं? आप एक गेहूं के दाने को ले सकते हैं, मैं परवाह नहीं करता ये कितना सिद्ध दिखाई देता है, आप विज्ञान ने एक निमृत किया जिसे आप काट कर खोल सकते हैं, इसके अंदर उसी तरह की एक नमी है, उसी प्रकार का हृदय, वही वस्तुएं जिससे वो दाना जमीन पर उग सकता है, और वही चीज आप उन्हें एक प्रयोगशाला में रख सकते हैं और दोनों में अंतर को नहीं समझा सकते हैं। एक दाना अच्छे रोटी के दाने को तैयार करेगा जैसे वो दूसरा एक उसी तरह से पके दाने को तैयार करेगा, लेकिन एक ही तरीके से आप उनका अंतर बता सकते हैं, उन्हें गाड़ना है। वो एक जिसे मनुष्य ने बनाया है वहाँ पर ऐसे ही रहेगा, वो सड़ता है और ये कभी भी ऊपर नहीं आता है, लेकिन वो जिसे एक परमेश्वर ने बनाया है जिसमें जीवन का जीवाणु है, यह फिर से जीने लगता है। आप एक मसीह होने का ढोंग कर सकते हैं, आप हो सकता है एक कलीसिया जाएं जैसे एक मसीह जाता है, और हो सकता है आप अपने नाम को किताब में डालें एक मसीह के जैसे, आप एक मसीह के जैसे एक संस्था से जुड़ सकते हैं, यह सब ठीक होगा, लेकिन जब तक वो अनंत जीवन आप में नहीं है जिसके लिए उस अच्छे चरवाहे ने अपने जीवन को दिया ताकि अलग, जब परमेश्वर पेंटिकॉस्ट पर नीचे उतर आया, वह एक अग्नि के गोलाकार के जैसे नीचे उतर आया, जैसे वो सीनै पर्वत पर उतरा था, जैसे वह उस चरवाहे के पास पहले आया था जो मूसा था, और जब वो नीचे उतर आया उसने अपने आप को अग्नि के जीवों में विभाजित करके हरे के ऊपर बैठ गया। परमेश्वर अपने आप को उसके लोगों के अंदर विभाजित कर रहा है और अपेक्षा करता है आपने उसे ग्रहण किया है, जिसे पतरस ने कहा यह आपके लिए है और आपके बच्चों के लिए है जो बाद में आते हैं। मित्रों, आप किसी भी धर्मशास्त्री को मत सुनना, आपको फिर से जन्म लेना होगा, और जब आप जन्म लेते हैं वो आत्मा जो आप में है वो परमेश्वर का भाग है और हर एक परमेश्वर के वचन की होने की गवाही देता है, ये सच्चाई है। यदि आपको यह अनुभव नहीं मिला है तो आइए अब जल्दी से जाएं उस चरनी की ओर जाएं जो वचन है। आइए हम जल्दी से बाइबल में जाएं, इन सजे हुए धर्म विद्यालय संबंधित कलीसिया से दूर एक सच्ची चरनी की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर, जहाँ पर उसे जाना जाता है। अपने सिर को झुकाएं, आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, यही वो सब है जिसे इस समय पर मैं बोलने के लिए जानता हूँ। हम क्रिसमस के समीप जा रहे हैं, वे रास्ते स्त्री और पुरुषों से भरे हुए हैं, लड़के और लड़कियाँ आगे बढ़कर धक्का दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वे किसी को उस वापसी उपहार को दे दें जिन्होंने उनके लिए उसी रीति से उपहार दिया होगा। बहुत से लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, बाहर रास्ते पर सिगरेट और शराब को क्रिसमस के उपहार के लिए खरीदते हैं। परमेश्वर, ये ऐसा दिखाई देता है जैसे वे इसे वापस ठीक आपके मुंह पर फेंक रहे हो। अपने बच्चों को और कोई काल्पनिक शिक्षा दे रहे हैं, रोमन पागान, एक संत निकोलस की धर्म शिक्षा, कोई झूठी कहानी, यही है संसार के द्वारा आसानी से स्वीकार किया गया है। और वे मसीह के सच्चे क्रिसमस, उस सच्चे मेमने से मुड़ गए हैं। परमेश्वर, मैं आज रात प्रार्थना करता हूँ कि जैसे हमने अपने सिरों को इस मिट्टी की ओर झुकाया है जहाँ से आपने हमें उठाया था, आपने एक बार अब्राहम से कहा, उस महान नबी चरवाहे को, अब्राहम आओ और उस समंदर के किनारे की रेत की गिनती करो, और उसने शब्द को वापस दिया, वे अनगिनत है, मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता हूँ। फिर आपने कहा, ऊपर आकाश की ओर देखो और उन तारों की गिनती करो, और वो जानता था कि ये असंभव है, और आपने उससे कहा, वैसे ही तेरा बीज होगा। हम उस संदेश को देखते हैं उस चरवाहे नबी की ओर, धरती की मिट्टी से उस आकाश के तारों को, कि यदि वहाँ पर मृत्यु हो जाए, हमारे मरणहार शरीर मिट्टी में चले जाते हैं, वहाँ पर एक जीवन है जो हमें फिर से तारों की ओर ऊपर उठा ले जा सकता है। जैसे आपने अपने महान नबी दानियल से कहा, और वे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, अंतिम दिनों में वे अद्भुत कार्य को करेंगे, और वे जो बहुतों को धार्मिकता की ओर मोड़ेंगे, हमेशा और हमेशा के तारों से अधिक चमकदार होंगे। प्रभु परमेश्वर, मान सृष्टिकर्ता, जो धरती पर यीशु के रूप में आना चाह रहा था ताकि मनुष्य जान जाए कि परमेश्वर क्या था, और आप ही केवल वो एक हैं जो मृत्यु के जुर्माने को ले सकते थे, कोई दूत नहीं, आपका कोई और स्थान नहीं ले सकता था, आप ही वो एक थे जिसने जुर्माने को भरा, और आप ही अकेले इसे न्यायपूर्वक इसे दूर कर सकते थे, और एक आत्मा होने के नाते आप नहीं मर सकते हैं, लेकिन आप देहधारी हुए जिससे कि आप मर सके, और एक मेमना बन गए जिससे आप अपने छुड़ाए हुए के पापों को दूर करें, जिससे आप अपने खुद के लहू के द्वारा उन्हें छुड़ाना था। ओह, ये कहानी बहुत ही महान है प्रभु, ये बहुत से लोगों के सिर के ऊपर से चली जाती है, यह सोचकर वो छोटा यहोवा चरनी में पड़ा हुआ है, उसे एक बालक की नाई जीना पड़ा था, वो छोटा यहोवा, उसने एक अस्तबल में जन्म लिया, वो छोटा यहोवा रास्ते पर बच्चों के साथ खेल रहा था, छोटा यहोवा वो नौजवान, छोटा यहोवा स्कूल जाने वाला बालक, और यहोवा वो सामर्थी। आपने इन सारे स्थानों को लिया, और फिर यहोवा वो मेमना, यहोवा वो नबी, और आप यह सब बन गए जिससे कि पाप के जुर्माने को सह सकें, और ताकि हमें अनंत जीवन को दे दें। हमें क्षमा कीजिए ओ परमेश्वर, हम दीन हैं, इस संसार की अयोग्य सृष्टि है, हम आज रात शर्मिंदा है प्रभु, जब हम पढ़ते हैं कि आपने हमारे लिए क्या कर दिया है, और हमने वापसी में बहुत ही थोड़ा किया है। आप किस तरह से उन बड़े बड़े धार्मिक नेताओं के दिनों में आए, आप किस तरह से खड़े होकर और पिता के वचन को प्रतिबिंब करना चाह रहे थे, आपने किस तरह से उनके धर्म शिक्षाओं के ऊपर समझौता नहीं किया, और आज ऐसा दिखाई देता है कि कोई भी एक नहीं है जो चाहता हो कि खड़े होकर फिर भी वचन को वो वचन बोले और समझौता ना करे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमें इन बातों के लिए क्षमा करें जिसे हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, और आप हमें आज रात हमारे हृदय में देंगे, जैसे हम इस हृदय को आपको इसे चरनी की नाई देते हैं, और हम जानते हैं कि हर समय उस क्रूस पर चढ़े मसीह को स्वीकार किया गया है, वहाँ पर एक नया जन्म होता है, वहाँ एक नई जन्मी हुई भेड़ होती है, वहाँ दूतों के द्वारा स्वर्ग में एक गीत गाना होता है, जब एक पापी पश्चाताप करने पर वे दूत फिर से गाने लगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यदि यहाँ पर आज रात कोई है जो आपको परमेश्वर के सच्चे उपहार की नाई नहीं जानता है, एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता की नाई नहीं जानता है, न ही एक मानसिक विचारधारा के द्वारा, लेकिन एक नए जन्म के द्वारा आपकी आत्मा के जो जन्म से आना है होने पाए, वे इसे अभी स्वीकार करें प्रभु हम अपने सरों को झुकाने के द्वारा। और यदि वहाँ पर एक कोई होता है प्रभु जिसने से नहीं किया हो, होने पाए उनके हृदय अभी आनंद को पा जाएं और उन पहले के चरवाहों के जैसे उनके अपने हृदय की चरनी में ढूंढे उस वचन को, मसीहा को, जिसे उन्हें पवित्र आत्मा की नाई प्रमाणित किया जाना है, वो इस दिन का महान चरवाहा। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं। जब हमने अपने सिरों को झुकाया है, और मैं भरोसा करता हूँ हमारे हृदय भी झुके हुए हैं, क्या आप मेरे प्रिय भाई, यदि आप एक कलीसिया के सदस्य हैं, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको इसे कहने के द्वारा ठेस नहीं पहुँचाई है जो मैंने कहा है, मैंने यह ठीक बात है कि आप कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं, हमें ये करना चाहिए, लेकिन ओ भाई आप उसे स्वीकार न करें, आपको फिर से जन्म लेना ही है। यही है जो उस महान नबी चरवाहे ने कहा, आपको फिर से जन्म लेना ही है। उसने इसे एक धर्मशास्त्री को कहा, तुम्हें फिर से जन्म लेना ही होगा। और जब आप फिर से जन्म लेते हैं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप विश्वास करते हैं, वे कहते हैं आपने जन्म पाया है जब आप विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल ने कहा शैतान भी विश्वास करता है। अब ध्यान दें, यह ऐसा नहीं है, यह एक अनुभव है। आप कहते हैं तो मैंने एक अच्छे जीवन को जिया है, उन प्रेरितों ने भी वैसे ही जिया, लेकिन उन्होंने फिर से जन्म नहीं लिया था जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया, वे यहाँ तक परिवर्तन भी नहीं हुए थे जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया था। आपको रात याद है, बैतरायल से पहले या बैतरायल पर इससे पहले बैतरायल जगह को ले ले, यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, जब तुम परिवर्तन हो तुम अपने भाइयों को स्थिर करना, और पतरस ने उसका 3.5 वर्षों तक अनुकरण किया और शैतानों को निकाला और बीमारों को चंगा किया, सुसमाचार को प्रचार किया था, और फिर भी वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ था। अब क्या आप अपने हृदय में आज रात उस तरह के एक संदेशवाहक बनना चाहते हैं? यदि आप सचमुच चाहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई और क्या कहता है, यही सच्चाई है भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ यही सच्चाई है। क्या आप, जब हमने अपने सिरों को झुकाया है और हर एक आंखें बंद है, मेरे लिए नहीं, मैं तो केवल एक मनुष्य हूँ, आपका भाई हूँ, लेकिन मसीह के लिए अपने हाथों को उठाएं और कहें, मैं ये विश्वास करता हूँ और सचमुच उस मसीह को अपने हृदय के अंदर चाहता हूँ, वह सच्चा क्रिसमस का उपहार। क्या अब आप अपने हाथों को उठाएंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे, ये अच्छा है। परमेश्वर आपको भी आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, और हर कहीं हाथ दिखाई दे रहे हैं। होने पाए यह हो जाए भाइयों, ये होने पाए बहनों, यह होने पाए मेरे मित्रों, परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं। इससे क्या फर्क पड़ता है कोई और क्या कहता है? याद रखना, ये आपका जीवन है। हो सकता है हम आज की सुबह धरती पर होते भी नहीं, हमारे पास जीवन का कोई आश्वासन नहीं है जो अब हमारे नथनों से अब हम सांस लेते हैं। हो सकता है हम हर एक और सांस कभी न लें, ये तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना अच्छा करता है, आप कितना अच्छा जीवन जीते हैं, और कितना, यीशु ने कहा जब तक एक मनुष्य फिर से जन्म नहीं लेता वो इसमें बिल्कुल प्रवेश करने न पाएगा। अब मैं जानता हूँ फिर से जन्म की शब्दावली क्या है, लेकिन आइए थोड़ा देखेंगे बाइबल में क्या हुआ था जब उन्होंने नया जन्म लिया था। पतरस एक विश्वासी था, वे प्रेरित विश्वासी थे, लेकिन उन्होंने फिर से जन्म को नहीं लिया था जब तक पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट पर नहीं उतरा उसके बाद में। अब वे सोच रहे थे क्या हुआ था, और पतरस ने कहा और बाकी के लोगों से कहा, तुम इज़राइल के लोगों, तुम ये जान लो, नासरत का यीशु परमेश्वर की मंजूरी से एक मनुष्य को तुम्हारे बीच में भेजा, चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य को करने के द्वारा जिसे परमेश्वर ने उसके द्वारा किया था। निर्धारित परिषद के द्वारा उसे पहले से ही जाना गया था, तुमने उसे गंदे हाथों से उठाकर और क्रूस पर चढ़ाया, जिसे परमेश्वर ने जीवित किया, और हम उसके गवाह हैं। उसने इसे उंडेल दिया है जिसे आप अब सुनते और देखते हैं, यह वचनों के अनुसार है। और फिर उन्होंने इसे सुना, उनके हृदय छिद गए और कहा, लोगों और भाइयों, हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं? पतरस ने कहा, पश्चाताप करो। अब मेरे कैथोलिक मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, 4 या 5 जिन्हें मैं जानता हूँ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपके याजक के साथ तर्क वितर्क कर रहा था, हो सकता है वो आपका याजक ना हो, लेकिन उन कैथोलिक याजकों में से एक, उसने कहा यीशु ने कलीसिया को सामर्थ्य दी ताकि पापों को क्षमा करे, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखोगे उनके रखे जाएंगे, यह सही है। लेकिन आइए देखें उसने इसे कैसे किया था, कैसे प्रेरितों ने उसकी आज्ञा का अनुकरण किया था, न ही उस तरह से उनके अनुसार जो आज के याजक करते हैं, लेकिन उस पहले याजक ने जो किया, यदि आप उसको बुलाना चाहते हैं, पतरस जिसके पास उस राज्य की चाबी थी, कैसे उसने इसे करने को कहा? उसने कहा, पश्चाताप करो, तुम में से हर एक जन, और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए है और उनके लिए जो आने वाले हैं, यहाँ तक जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। और यदि परमेश्वर अब भी बुला रहा है तो वही अनुभव आपके लिए है यदि आप उसी निर्देश का अनुकरण करते हैं। यदि ये झुंड इसे विश्वास करता है, अपने सिरों को झुकाने के साथ आमीन कहें, फिर जो कुछ भी घटी है जो वचन के विरोध में है और ये चरवाहे के अनुसार नहीं है, प्रभु यीशु वे सब आपके हाथों में हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक खुला हृदय आज रात, जिसे मसीह प्राप्त नहीं हुआ है, वो मसीहा जो मसीह वचन है, अभिषेकित वचन जो प्रकट हुआ, और यदि यहाँ आज रात कोई हृदय है जिसके पास वो मसीह नहीं है, वो सच्चा क्रिसमस का उपहार, वहाँ वो ही केवल सच्चा क्रिसमस का उपहार है जिसे परमेश्वर ने संसार को दिया और चरवाहों के द्वारा इसे संसार के लिए जाहिर किया, उसके मेमने को जो पाप के लिए प्रायश्चित्ता है। और यदि वो हृदय आज रात खुला हुआ है, इसे इसमें स्थापित करें प्रभु, उस मसीहा को जो आज का वचन है, हम उन्हें आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से जो आपका पुत्र है, आमीन। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? प्रथम तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसके धर्म की खोज करो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मित्रों, इससे पहले हम सभा को बर्खास्त करें, मैंने बहुत बार बोलना चाहा है, मुझे बहुत ही गलत समझा गया है, मेरे पास परमेश्वर से यह संदेश होता है और मुझे इसे जाहिर करना ही है, कुछ भी हो जाए। मैं जानता हूँ यह गलत फहमी है, यदि यह नहीं था तो तब यह परमेश्वर से संदेश नहीं होता, यह नहीं हो सकता। वहाँ आज रात इतनी गड़बड़ है कि लोग गलत फहमी से बच नहीं सकते। मैं विश्वास करता हूँ हर एक संस्था और संप्रदाय में परमेश्वर के लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं मेरे भाइयों के खिलाफ हूँ। मैं यहाँ टूसॉन में 3 वर्ष पहले आया और मैंने यहाँ पर आप सेवकों के साथ एक बैठक की थी भाई गिलेमोरो के यहाँ, और मुझसे यह पूछा गया था क्या मैं यहाँ पर एक कलीसिया को आरंभ करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैं यहाँ पर आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। लेकिन मुझसे 3 वर्ष में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन अब भी मैं वैसे ही मैं यहाँ पर आपकी सहायता करने के लिए हूँ। मैं यहाँ पर आपके साथ हाथ मिलाने के लिए हूँ, न ही आपके साथ संस्था से जुड़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर के वचन पर हाथों को और हृदय को मिलाने के लिए हूँ, ताकि सुसमाचार को प्रचार करने की कोशिश करूँ उस हर एक खोए हुए प्राण और हर एक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जो हमारे विचारों की आवाज के नीचे हैं। मैं अपने आप को परमेश्वर को आज रात मेरे पूरे हृदय के साथ अर्पण करता हूँ। वो सब कुछ जो मुझ में है, मेरे पास देने के लिए और अधिक कुछ नहीं है। मैं लोभान, गंधरस और सोना नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी मुझ में है, जिसे परमेश्वर मुझे जीवन में देता है, इसे आज रात नए सिरे से उसे समर्पित करता हूँ, मेरे हृदय में उसके वचन की चरनी पर, और उससे उस वचन के साथ खड़े रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। यदि वो मुझे एक और वर्ष जीने के लिए देता है, जितना मैं वचन में खड़े रहने के विश्वास योग्य रह सकता हूँ, उतना रहूँगा। इसका हर एक अंश प्रचार करूँ और इसके हर एक अंश को विश्वास करूँ, इसलिए परमेश्वर मेरी मदद करना। क्या आप भी मेरे साथ वैसे ही करेंगे? हमें आज स्वीकार करें प्रभु, हम आपके क्रिसमस के उपहार को स्वीकार करते हैं, वो मसीह, वो अभिषेकित वचन जो हमारे साथ आपकी उपस्थिति को प्रमाणित करता है। प्रभु, संप्रदाय और उन संस्थाओं के होने के बावजूद हम आज अपने आप को देखते हैं, संसार टूट रहा है, यहाँ पर वो महान मसीह अपने हाथों को फैलाए हुए खड़ा है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग ऐसा है, जिसने उस प्रतिज्ञा को किया है, इस अंतिम दिनों में वो कलीसिया इतनी संस्थागत हो जाएगी जब तक ये लोथकिया के अंदर नहीं चली जाती है। और हम आज इसे देखते हैं प्रभु, हम क्या कर सकते हैं? प्रिय परमेश्वर, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे और इन दूसरे चरवाहों की सहायता करें प्रभु, जो इस सारे संसार में है, इस संसार के जो चरवाहे हैं, ताकि इसे इन आने वाले वर्ष में जाहिर करें प्रभु, हमारी सहायता करें प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमें आपका प्रेम और आपकी आत्मा और आपका उजाला दीजिए। हम अपने आप को आज रात आपके वचन और आपकी पुकार के लिए समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम आपके क्रिसमस के उपहार को स्वीकार करते हैं। वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जयदारी हुआ है, आमीन। मैं कलीसिया के गीतों को पसंद करता हूँ, और पौलुस ने बाइबल में कहा, जब मैं गाता हूँ मैं आत्मा में गाता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ मैं आत्मा में प्रचार करता हूँ, जब मैं जो कुछ भी मैं करता हूँ मैं सबको यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। ऐसा होने के लिए आप पर यह जोर दिया गया है, और मैं आपकी सराहना करता हूँ। मैं संदेश के साथ आया हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं इसे करने से घृणा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य बाध्य हूँ। भाइयों, यदि मैं इसे नहीं करता हूँ तो मैं एक ढोंगी हूँ, यदि मैं इसे नहीं करता हूँ मैं अपनी विवेक के लिए विश्वासघाती ठहरता हूँ, और मेरा खुद का जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास है, मुझे इसे करना ही है, कुछ अलग नहीं होना है, लेकिन मेरे बुलावट के लिए सच्चा बने रहना है। मैं आप सबकी सहायता करना चाहता हूँ, मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। अब आइए इस हर समय के महान स्तुति के गीत को गाएं। मैं इसे बहुत ही पसंद करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ यदि हम उससे केवल प्रेम करते हैं, हम वो करेंगे जो वो हमसे करने के लिए कहता है। तुम मुझे कैसे प्रभु बुलाते हो और वो बातें जो मैंने तुमसे करने की आज्ञा दी है नहीं करते हो? तुम मुझे कैसे प्रभु बुलाते हो और फिर वो बातें जो मैंने तुमसे करने की आज्ञा दी है नहीं करते हो? क्या आप पहले किराए के चरवाहे को सुनना पसंद करेंगे जो कहेगा, अपने नाम को किताब में लिखवाओ और इसके साथ जुड़ जाओ, इस प्रभु बोझ को ले लो, इसे कहो और यह सब ठीक बात है, जब उस महान चरवाहे ने खुद कहा, जब तक मनुष्य फिर से जन्म नहीं लेता है वो स्वर्ग राज में प्रवेश करने न पाएगा। और उस दिन के प्रशिक्षित धर्म शास्त्रियों को देखो, जो प्रशिक्षित थे, पवित्र, साफ जीवन जीते हुए, हमारे पास आज इसके साथ तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है जिस तरह से उन्होंने जिया था। और उस महान चरवाहे ने उन्हें क्या कहकर पुकारा, कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि उन्होंने नहीं, उन्होंने वचन को पहचाना लेकिन दूसरे दिन के वचन को, उस दिन के वचन को नहीं पहचाना। यदि वे नूह के समय को पहचानते हैं, यह ठीक बात है, वो नूह के समय के लिए था, लेकिन ये मूसा के समय काम नहीं करेगा, और मूसा का समय मसीह के समय में काम नहीं करेगा, समझे? लूथर का समय वेस्ली के समय काम नहीं करेगा, वेस्ली का समय पेंटिकॉस्ट के समय काम नहीं करेगा, और पेंटिकॉस्ट ने उसी काम को किया जिसे उन बाकी लोगों ने किया था। अब किसने मेरी इन बीते हुए दिनों में सहायता की है, आपसे पूछता हूँ। जब एक घास की पत्ती ऊपर आती है, यह क्या है? क्या जब एक गेहूं की पत्ती ऊपर आती है, यीशु ने कहा, जब तक एक गेहूं का दाना जमीन में गिरता नहीं है, क्या होता है जब एक गेहूं का दाना या एक गेहूं जमीन में गिरता है? जो पहली चीज ऊपर आती है वो एक छोटी सी पत्ती होती है, ये उस दाने के जैसे नहीं होती है जो जमीन में गया था। प्रकृति को देखना, ये उस दाने के जैसा नहीं होता है जो जमीन में गया था, लेकिन यह दाने के जीवन का संदेश वाहक है। क्या आया वो नास्तिक जिसने अभी उस प्रसिद्ध किताब को लिखा, वो मौन परमेश्वर, इसने कहा, कैसे वहाँ पर एक परमेश्वर हो सकता है जो एक लाल समुद्र को खोल सकता है और हजारों वर्ष के अंधकार के युग में खड़े होकर और इन छोटे बच्चों को शेरों के द्वारा खाते हुए देख सकता है, और लोग क्रूस पर लटकाए गए और रणभूमि और स्थानों में हत्या कर दी गई, और यहाँ तक उसने अपने मुंह को भी न खोला। देखो, वचन एक प्रकाशन है। वह गेहूं, जब उस सच्चे गेहूं ने शुरुआत में आरंभ किया, इसने परमेश्वर को छोड़ दिया, वहाँ अतः एक गेहूं आता है, परमेश्वर का सच्चा प्रतिबिंब करने वाला जिसने उसके सारे वचन को प्रतिबिंब किया, यहाँ तक कि वह वचन था। तब परमेश्वर ने उसे पेंटिकॉस्टल पर एक दुल्हन को दिया, लेकिन वह दुल्हन अंधकार के युगों में जमीन के अंदर चली गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस गेहूं के दाने ने किया, यह अंदर चला गया था। और ये कार्य क्यों नहीं कर सका? क्योंकि ये धरती के नीचे छिप गया था, इससे पहले ये जीवन को लाए। लेकिन एक समय वहाँ पर एक याजक आता है जिसका नाम मार्टिन लूथर था, और उसने एक सच्चाई को आगे लाया, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। वहाँ पर एक पत्ती आ जाती है, बाद में इसके पीछे पीछे एक और पत्ती आती है, रिंगली, और फिर केल्विन और नॉक्स और आगे आगे। पहली चीज आप जानते हैं, ये उसके पत्ती को बदलता है, फिर एक गुच्छे के अंदर चला जाता है। अब यह थोड़ा सा इसके समान दिखाई देता है, लेकिन अब भी यह उस मूल चीज नहीं थी जो उस जमीन में चला गया था। वहाँ पर साथी वेस्ली आता है, वेस्ली से मैथोडिस्ट कलीसिया और मैथोडिस्ट से नाजरीन में आया, यूनाइटेड ब्रदरिन और इत्यादि। और इसने क्या किया? ये फिर से वापस गिर गए, और उन्होंने एक गेहूं के सच्चे दाने के जैसे दिखने वाले को अब आगे लाया। पेंटिकॉस्ट। अब देखना यीशु ने मत्ती 24:24 में कहा, अंतिम दिनों में दो आत्माएं बहुत ही नजदीक होंगी, यहाँ तक कि यह चुने हुए को भी भरमाएगी यदि यह संभव होता था तो। अब जब वो गेहूं का दाना आगे आता है, कोई भी खेती करने वाला जानता है कि यह सिद्ध जैसा दिखाई देता है, उस गेहूं के दाने के जैसा, लेकिन आप नीचे बैठकर इसे अपने हाथों में ले, इसे खोलें और इसके अंदर कोई गेहूं नहीं होता है, यह एक भूसी है। लेकिन इसके पीछे एक के पीछे एक माइक्रोस्कोप यंत्र से आप एक छोटे अंकुर के अंश को देख सकते हैं, वहाँ पर वो दाना आता है और तब वो भूसी को क्या करना होता है, ये दाने का बचाव करता है, यह तेज सूर्य से इसे खत्म कर देगा, यह दाने को बचाए रखता है जब तक यह दाना पक्वता में नहीं आ जाता। और फिर जब वो दाना पक्वता में आने लगता है, वो भूसी इससे अलग होने लगती है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, वो दाना जो आगे आता है उसे उसी प्रकार का दाना होना है जो जमीन के अंदर चला गया था। लूथर की बेदारी के बाद एक संस्था आ गई, वेस्ली की बेदारी के बाद एक संस्था आ गई, अलेक्जेंडर स्मिथ के बाद जॉन अलेक्जेंडर, कैपल के बाद जॉन स्मिथ और वे बाकी के सारे एक संस्था आ गई। पेंटिकॉस्ट के बाद ठीक आगे वो वास्तविक चीज के जैसे दिखी, लेकिन एक संस्था आ गई, इसने क्या किया, अलग हो गई। हमारे पास 15 वर्षों की बेदारी हुई है, इसे सारे इतिहास में कभी जाना नहीं गया। और देखो इस 15 वर्षों की बेदारी में ये सारे संसार में फैल गई है और एक भी संस्था इसमें से बाहर नहीं आई है। यह कहाँ था, इसने अंतिम बारिश को आरंभ किया, ये अपने में मर गए, तुरंत ही मर गए। वहाँ पर इसका अनुकरण करने के लिए कोई संस्था नहीं है, क्यों, यह अपने आप में दाना है, वहाँ अब कोई और नहीं हो सकता है। और अब भूसी निकलती जा रही है, आपसे कोई सहयोग नहीं, कोई भी आपको नहीं चाहता, ऐसा क्यों है, इसे ऐसा ही होना है। वहाँ पर वो कलीसिया क्यों स्थिर थी, ताकि इसे सहयोग दे, किसने इसका सहयोग किया होता, क्या बैप्टिस्ट या प्रेस्बिटेरियन या लूथरन, एक दिव्य चंगाई की सभा का किसने सहयोग किया होता। अब सच्चाई सामने आती है, क्या होता है, भूसी नहीं लेकिन वो जीवन ठीक भूसी से निकलकर और सीधे दाने के अंदर चला जाता है, जो सच्चा वास्तविक जीवन है। वो संस्था वहाँ पर खड़ी होती है, मरती जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने हर एक युग में किया है, ये वैसे ही करते हैं। आप इसमें से 50 वर्ष पूर्व बाहर आ गए हैं और ठीक वापस इसके अंदर चले गए हैं, लेकिन वो वास्तविक जीवन दाने के पीछे पीछे जाता है। हम अंतिम समय में हैं भाइयों। इसे किसके लिए अलग किया गया, इसलिए कि यह दाने को पुत्र की उपस्थिति में लेकर आए, ताकि दाने को एक सुनहरे पक्वता में लेकर आए, एक पके हुए सुनहरे दाने को जो मूल अवस्था है। क्यों इसे अलग किया गया है, इसलिए इसका कारण दिल का दौरा है, वे आंसू है, जिससे वे सूर्य एसयूएन की उपस्थिति में नहीं पड़े रहते हैं, लेकिन पुत्र एसयूएन की, ताकि वे सच्चे संपूर्ण सुसमाचार के लिए पक जाएं, जिससे हर एक चीज को जाहिर करें, जिसकी बाइबल में यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है। वहाँ पर आज एक देह लोगों के बीच में खड़ी हो रही है और वहाँ पर अब कोई और संस्था नहीं होगी, यह ठीक उसी धनी लौदिकिया के अंदर चली जाती है। संस्था को किस बात के द्वारा सफल किया गया है, लाखों डॉलर और लाखों प्राण। और चरवाहा किस बात से आया था, ताकि उसके भाइयों का बंधुआई से छुटकारा करे, मैं नहीं जानता। परमेश्वर हमारे साथ होना, हमारी सहायता करना। वचन का अध्ययन करो, वचन में से ढूंढो, उनमें हम सोचते हैं कि हमारे पास अनंत जीवन है, और वे जो सच्चाई की गवाही देते हैं। देखो परमेश्वर ने उस वचन को हर एक युग के लिए बांट दिया है, इस युग में भी हमेशा ही। यीशु ने क्या किया, जब वो आया उसने उन लोगों से कहा, तुम ढोंगी हो, तुम सफेद दीवारों को पोतते हो और नबियों की कब्रों को बनाते हो और अपने तुम्हारे पिता को इसमें डाला गया है, और तुम तुम्हारे पिता के पुत्र हो और जो काम उन्होंने किया है तुम भी करोगे, यह हमेशा ही वैसा ही रहता है मेरे भाइयों। लेकिन जब एक दिन यीशु आता है, वह भेड़ों का महान चरवाहा पेंटिकॉस्ट से होते हुए, लूथरन से, सारे युगों में से होते हुए जो उजाले को ग्रहण कर चुके हैं, जब ये संदेशवाद के जरिए से होता हुआ आता है, संदेशवाद को ग्रहण नहीं किया, उस उजाले को ग्रहण किया, देखो बाहर चले गए, वह छुड़ाने के लिए आएगा। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं जानता हूँ कि वो वापस आ रहा है। क्या आप उस झुंड की गिनती में होंगे, क्या आप गिनती में होंगे? वहाँ इसे करने का केवल एक ही तरीका है, कलीसिया के साथ जुड़ने के द्वारा नहीं, लेकिन उसके अंदर जन्म लेने के द्वारा। और उन सबको जिसे पिता ने मुझे दिया, वे मेरे पास आएंगे और कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे नहीं बुलाता है। देखो, यही वो सब बात है, इसे ग्रहण करें। यही वो केवल क्रिसमस का उपहार है जिसे मैं जानता हूँ। परमेश्वर का उपहार है जिसे उसने संसार को दिया, उसका इकलौता पुत्र, और वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जो वचन है, समझे, इस दिन में उसका विश्वास करो, जो बाइबल की संपूर्णता है। जब वो सात रहस्य पहले उन सात कलीसिया कालों में से होते हुए वहाँ सात छिपे हुए रहस्य थे, मैं इस पर एक किताब को लिख रहा हूँ। और ज्यादा समय नहीं हुआ, एक बड़े धर्मशास्त्री ने मुझसे कहा, भाई ब्रैनम, देखो शैतान आपको रास्ते पर कैसे रोकने की कोशिश करता है। उसने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप पर प्रकट करेगा हम आगे क्या करने जा रहे हैं। ये कोई महान रहस्य होगा जो सात मोरों के नीचे छिपा है। मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं है भाई। उसने कहा, यह कुछ तो होगा जो वचन में लिखा भी नहीं गया है। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप भूल रहे हैं, जो कोई भी इसमें से एक शब्द को जोड़ेगा या इसमें से एक शब्द को निकालेगा, देखो यह पहले से उसमें है, लेकिन सुधारक इसे देखने से चूक गए। वे इसे देखने के लिए ज्यादा समय तक नहीं जिए, और वे युग अब बीत चुके हैं। हम ठीक यहाँ लौदिकिया पर हैं, और याद रखना, लौदिकिया का युग वो कलीसिया के बाहर था, खटखटा रहा था, वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हवा ने उसके आदम को बाहर रखा है। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए। आइए हम उसे पाने के लिए छावनी के उस पार जाएं। आइए हम बिना फाटकों के उसके साथ सहन करें। आइए हम उसकी मृत्यु में जाएं, उसके गाड़ने में, उसके पुनरुत्थान में जाएं, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आइए हम जाने से पहले एक स्तुति के गीत को गाएं। क्या आप गाएंगे, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्या बहन मुझे इसके लिए धुन को देगी। कितने लोग इस पुराने स्तुति के गीत को जानते हैं। मैं, यदि आप इस सभा में कभी रहे हैं, मैं इसे पसंद करता हूँ। अब आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, यहोवा को सोचें। कोई भी एक योग्य नहीं था, कोई भी इसे नहीं कर सकता था उसे छोड़कर, और नीचे उतर आया और एक छोटा बालक बन गया। वो आया, एक नौजवान बना, वो एक सुतार बन गया, एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति, वो एक मेमना बना, वो एक बलिदान बना, वो विजयी होकर जी उठा, यहोवा। और जैसे मूसा ने अपने हाथ को अपनी छाती में से, अपने हृदय में से बाहर निकाला, परमेश्वर ने अपने हाथ को उसके हृदय से बाहर निकाला, जो उसका रहस्य है, उसका पुत्र जिसे पाप की बीमारी से मारा गया था, जो ला इलाज था, और इसे वापस अपने हृदय के अंदर डाल दिया और इसे आगे की ओर खींचा और इसे आपके और मेरे लिए बढ़ा दिया। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब उसकी ओर देखें। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया। और मेरे उद्धार को खरीद लिया। उस कलवरी के पेड़ पर, कितने लोग जानते हैं, इसे एक चरवाहा होना था। आमीन कहें, जरूरी है, क्यों एक चरवाहा, इसे होना था। अब जैसे हम इसी अंतरे को फिर से गाते हैं, इस टेबल के यहाँ वहाँ जाएं, वहाँ पर मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लूथरन, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक, और वे सारे यहाँ पर आज रात बैठे हुए हैं, हाथों को मिलाते हुए कहें, यात्री व्यक्ति, मैं आपके साथ यहाँ होने के लिए बहुत ही खुश हूँ। उनसे कुछ तो कहें, कहें परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे हम अब एक दूसरे के साथ हाथों को मिलाते हैं, जब हम इसे फिर से गाते हैं, मैं मेरे उद्धार को उस कलवरी के पर्वत पर। अब आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं और उसके लिए गाएं। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। और मेरे उद्धार को खरीद लिया। उस कलवरी के पेड़ पर, और अब परमेश्वर बिना स्वरूप के है, इसलिए आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और अब इसे गुनगुनाएं जैसे एक छोटा बालक होता है। आप परमेश्वर के बालक हैं, ईश्वर न देखें कि संसार क्या सोचता होगा। आप अब आराधना कर रहे हैं, मसीह की आराधना कर रहे हैं, अब अपने सिरों को झुकाकर और इसे गुनगुनाएं। क्या आप महसूस नहीं करते जैसे सब कुछ साफ हो गया है? एक तरह से कुछ तो सारे संदेह को मिटा दिया गया है और संसार को आपसे अलग कर दिया गया है, ऐसा महसूस करते हैं? अपने हाथों को उठाएं। मैं अब सब कुछ साफ साफ महसूस कर रहा हूं, मैं अलग ही महसूस कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं जैसे मैं उसके हाथों से खा रहा हूं। मेरे पास जैसे यहां भाई ने गवाही दी, भोजन, चरवाहे का भोजन, भेड़ का भोजन, यही वो वचन है। परमेश्वर की भेड़ उसके भोजन को खाती है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हरेक वचन से जीवित रहेगा, और ऐसा ही है, बाइबल कहता है। हमें हरेक वचन को खाना है, न ही कुछ वचनों को लेकिन हरेक वचन जो मुख से निकलता है। ओह, क्या ये आपको उससे प्रेम करने को नहीं लगाता है? यह सोचकर कि अब हमारे पास अनंत जीवन है, ऐसा नहीं कि हम होंगे, अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं, ना ही होंगे लेकिन अभी है, और ये हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठाता है। और वो बड़ा टेलीविजन जो जाहिर करता है कि वहाँ पर यहाँ वायु में तरंगे हैं, जो लोगों को बनाता है, ये व्यक्ति जो सारे संसार में घूम रहे हैं और टेलीविजन के पर्दे के द्वारा जाना जाता है। परमेश्वर का महान वचन और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को लेता है, यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थानों में उसकी भेड़ों के लिए प्रतिबिंब करता है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या वो अद्भुत नहीं है? अद्भुत परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आइए हम कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाएं। क्या आपके पास किसी के लिए आशीष प्रार्थना है? अब याद रखना, क्रिसमस के दौरान प्रभु यीशु की आराधना करें, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ में उसकी आराधना करें। और यदि मैं कभी आपके पक्ष में रहूं, आपके पास्टर के, आपकी कलीसिया या कोई भी हो, वो रात कभी भी इतनी अंधकार नहीं होती, वो बारिश कभी इतनी जोर से नहीं गिरती। एक रात एक महिला है जो यहाँ खड़ी हुई है, वो यहाँ उपस्थित है। मैं बहुत ही व्यस्त था, बीमार हो गया था, और ये सब करते करते यहाँ तक 80 साल की ऐसे ही कुछ महिला थी जिसने अपने दिमाग को खो दिया था, और वो उसने सोचा उसके पास एक बालक है या ऐसे ही कुछ, वो अपने आपे से बाहर थी। और बिल्ली ने ऑफिस से, उसने मुझसे फोन किया, कहा डैडी क्या प्रार्थना कर सकते हैं? मैंने कहा मैं ठीक अभी कर सकता हूँ, वहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं इसे अभी नहीं कर सकता हूँ। उसने कहा डैडी क्या आप प्रार्थना के लिए जा रहे हैं? मैं उनसे कह दूंगा आप प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। और बिल्कुल उसी समय वो महिला अपने आपे में आ गई, नींद में चली गई और अपनी सामान्य परिस्थिति में उठी। उसने पूरा चिकन का भोजन किया और अपने सामान्य चेतना में आ गई। लोग यहाँ पर खड़े होकर कुछ समय पहले इसकी गवाही दे रहे थे। भाई मैक, मैंने यहाँ कुछ समय पहले उन्हें देखा है कलीसिया में कहीं, तो वो यहाँ पर हैं। उन पास्टरों में से एक, वे स्थानीय पास्टर हैं, वे बहुत ही प्रिय भाई हैं, और मैंने हमेशा ही भाई मैक को पसंद किया है जब से मैंने पहले सेवकाई को आरंभ किया था, और तब मैं उनसे मिला। और मैं बहुत पहले ब्रिटिश कोलंबिया में था, और आपको केवल दिखाने के लिए कैसे परमेश्वर हर एक काम को सही करता है, मैं पहले से एक घोड़े पर पर्वत पर चढ़ गया था और वहाँ पीछे जंगल के अंदर जा रहा था, जहाँ पर मुझे एक झुंड की ओर अगुवाई हुई थी जो परमेश्वर के लोग थे, इंडियन जो मूल अमेरिकन कहलाते हैं, और वे सब परिवर्तन हुए थे और यीशु को स्वीकार किया गया था। और वो भविष्यवाणी के द्वारा जिसे इंडियन, वो जो मूल अमेरिकन कहलाते हैं, लड़के ने बताया, जिसने 2 वर्ष पहले अपने छोटे घोड़े को खो दिया था, उसे बताया गया था वो उसे कहाँ पर मिलेगा, ये कितनी दूर पर होगा, और वो छोटा घोड़ा कहाँ पर खड़ा होगा। उसकी माँ दिल के दौरे से मर रही थी, वह चंगी हो गई थी और उद्धार को पाया था, और ये लड़का बस इसे देखते हुए वहाँ पर आ रहा था और जानता था कि वो उसका छोटा घोड़ा बिल्कुल वहीं पर मिल गया था जिस तरह से उसे बताया गया था। हर एक चीज वहाँ पर पूरी हुई थी। एक शब्द जो प्रभु ने कभी बोला है, मैं आप किसी से भी पूछता हूँ, क्या आपने कभी उसे कुछ ऐसा कहते हुए सुना है जिसे उसने कुछ मुझसे आपको कहने के लिए कहा हो, लेकिन क्या वह बिल्कुल वैसे ही हुआ है? यदि यह सही है तो आमीन कहें। देखा, बिल्कुल वैसे ही वे कभी एक बार भी नहीं चुका है। और भाई मैक एक और मृत्यु की कगार पर पड़े हुए थे, और ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी ने बिली को फोन किया, मेरे पुत्र की पत्नी को फोन किया और कहा, पूछा मैं कहाँ पर हूँ। और प्रिय छोटी महिला जो उसकी पत्नी थी और वो मेरी पुत्र वधु ने कहा, वे पूर्व की ब्रिटिश कोलंबिया में एक शिकार के दौरे पर गए हैं। और उस सुबह को किसी कारण से मैं बस उस घोड़े की सवारी नहीं कर पाया। और फिर बिली ने कहा, मैं विश्वास करूंगा, मैं एक बार फिर से घर में फोन करूंगा। और वो वहाँ चौकी पर फोन करने के लिए चला गया, और यहाँ पर वे दौड़कर वापस आ रहे थे जब वो छोटी इंडियन जो मूल अमेरिकन महिला थी वहाँ पर खड़ी थी। वो छोटी जिसके पास वो छोटा घोड़ा था, कहा, भाई मैक मृत्यु की कगार पर पड़े हुए हैं और वो आपको बुला रहे हैं। और मैं उठकर जंगलों पर चला गया, अपने घुटनों पर गया। मैंने कहा, प्रिय परमेश्वर, वहाँ पर 3,000 मील दूर देश के उस ओर एरिजोना के गर्म राज्य में टूसान में वो मेरा भाई और वो मृत्यु की कगार पर पड़ा हुआ है, क्या आप उसकी सहायता करेंगे? किसी ने तो मुझसे कहा सब कुछ ठीक है। और जब मैं एक दिन भाई मैक के पास गया उससे बात करने के लिए, और मैंने उससे पूछा, आपको किस समय पर चंगाई मिली थी? यह बिल्कुल उसी समय पर हुआ था जब हम प्रार्थना के लिए गए थे। ओह, वो क्या वो अद्भुत नहीं है? वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। मैं ये जानकर बहुत ही खुश हूँ कि मैं राजा की उपस्थिति में रहता हूँ। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे, और एक छोटा बहुमूल्य भाई जो यहाँ पर है, एक मिशनरी का भाई जो मेरा मित्र है, एक असेंबली ऑफ गॉड का सदस्य, एक छोटा भाई यहाँ पर है, मैं उसे क्रिची कहकर बुलाता हूँ। उसने बहुत ही अच्छी तरह से बात को बताया। मैं आपको भाई क्रिची यह कहकर बुलाता हूँ, और मैं यह भी नहीं जानता क्या कहूँ, आप मेरे भाई हैं और यीशु मसीह की पीड़ाओं में अंतिम दिनों के संगीत सेवक हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं सोचता हूँ भाई टोनी ने कहा, आप इस समय पर श्रोतागण को बर्खास्त करने जा रहे हैं। जब हम अपने सिरों को झुकाते हैं तो ठीक है, आइए